पहला सवाल कुछ सोशल इश्यूज पर है, इसके लिए कम और बेश कह सकते हैं इस टाइप के डिस्कशन के लिए कल एक प्रोग्राम रखा गया था, वो सुबह के वक्त रखा गया है, तो उसके ऊपर शायद हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, बेहतर है क्योंकि इसका पॉलिटिक्स से ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। इन्होन फॉर्मेंट डिवोर्स का इशू, वुमेन एम्पावरमेंट, तो वो क्यों इशू बन गया, एडल्ट मेंटल इशूज, और उसके बाद इन्होंने फरमाया कि रन अवे फ्रॉम इस्लाम, रोल ऑफ पेरेंट्स एंड किड्स स्पेशली इन वेस्टर्न वर्ल्ड। तो मैंने अर्ज़ किया कि ये कम बेश कल का जो सेशन है सुबह को रखा गया वो इस टाइप का ही है। अच्छा, अब वो फिर दोबारा वही ऐसे ही एक सवाल है, व्हाट इज आयतुल्लाह खामनाईज ओपिनियन ऑन लिविंग इन द वेस्ट फॉर शियाज। अच्छा, ये जनरली चले इसके ऊपर एक जल्दी से एक बात कर लेते हैं, ऐसे ही बयान करते हैं, कहते हैं 60s में कहीं आयतुल्लाह बुजर्दी का एक चाहने वाला उनके पास आया 60s में कहीं, और वो आया और उसने कहा कि हाजगा मेरा बेटा जर्मनी जा रहा है, और वो जो जर्मनी जा रहा है तो वहाँ पे उसने मुझे बताया कि वहाँ पे कुछ मसाइल हैं बारा, तो इतना अच्छा नहीं है वहाँ पे, दीन के हिसाब से कुछ सख्तियाँ हैं, तो अब मैं अपने बेटे को क्या बोलूँ। आयतुल्लाह उज़्मा बुजर्दी 60s, तो उन्होंने कहा कि अपने बेटे को बोलो कि देखो बेटा, अगर तुम फुरू दीन पे अमल ना कर सको तो वापस आ जाना, अगर फुरू दीन पे अमल ना कर सको तो वापस आ जाना। तो वो जो मानने वाला था अजयगा का, उसने अपने बेटे को बोल दिया कि भाई आगा साहब ये कह रहे हैं कि अगर आप फुरू दीन पे अमल ना कर सको तो वापस आ जाना। अब वो आजकल का दौर तो था नहीं, उस ज़माने में बहरहाल वो सुन भी लेते थे अपने अब्बा की, तो उसने सुन भी लिया कि अब्बा अगर कह रहे हैं तो चलो मैं मान भी लूँ। तो वो आया और उसके कुछ अर्से के बाद, मसलन 5-6 महीने के बाद, उसने अपने बाबा को ख़त लिखा और उसने कहा कि अब्बा अगर आयतुल्लाह ने ये कहा था कि उस फुरूए दीन पे अमल ना करो तो आना, तो मुझे समझ में आ गया है कि यहाँ उसूले दीन भी नहीं बचेगा, लिहाजा मैं वापस आ रहा हूँ, मैं यहाँ नहीं रुक पाऊँगा, ना मेरा फुरूए दीन बचेगा ना यहाँ मेरा उसूले दीन बचेगा। लेकिन ये बात है कब की, 60s की, और ये बात है उस वक्त की कि जब उलमा की कोई सुनता भी था और वो लड़के अपने बाबा की भी सुन लेते थे। अब मामला जो है वो काफ़ी तब्दील हुआ हुआ है। तो अब ये था कि ओपिनियन क्या है, भाई देखो सादा सी एक बात है, ओपिनियन सादा सी है, ओपिनियन ये है कि अगर आप दुनिया में आने का हदफ कहीं पे रह के पूरा कर सकते हैं तो आपके लिए रुकना सही है, और अगर कहीं आप ऐसी जगह रुक रहे हैं जहाँ पर रुककर आप दुनिया में जो भेजे गए हैं उस हदफ को पूरा नहीं कर सकते तो फिर आपका रुकना फिर उस जगह पे सही नहीं है, किसी ऐसी जगह जाएं जहाँ पूरा कर सकते। अब आप ये कहें ये काम पाकिस्तान में नहीं हो सकता है, तो यहाँ आ जाओ, अगर आप कहें यहाँ नहीं हो सकता तो कहीं और चले जाओ। क्यों भाई, आप किसी भी चीज़ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ पर तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते जो खुदा ने हमारी जिंदगियों के लिए, शुक्रिया, हमारी जिंदगियों के लिए हदफ रखा है उस पर तो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो आप सिर्फ ये देखें कि आपका जो भी ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ है वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, और वो कैसे पूरा होगा। मसलन पहले ऐसा होता था, हम लोग भी ज़ाहिर है थोड़ा सा हम लोग भी गुजार गुजार के मैच्योर होते हैं फिर, या समझने लगते हैं कि मैच्योर हो गए, शायद सिर्फ बुढ़े होते हैं। तो उसमें यह था कि पहले अगर कोई हमसे पूछता तो हम लोग अपना फतवा खट से दे देते थे कि भाई वापस चले जाओ। अच्छा, फिर अंदाज़ा लगाया कि भाई एक तो ये फतवा लोगों के अजहान के ऊपर काफ़ी भारी है कि वापस चले जाओ, दूसरा मसला ये कि वापस जाना भी बहुत सारे लोगों का हल नहीं बना, वो वहाँ जाके और मुसीबत में फंस गए, और फिर ये कि कोई ये कह के भाई ये जो यहाँ पर आए ये तो फिर कभी सेंटर में आ जाते हैं, वो तो ये भी नहीं कर रहे होते। तो सारी मिसालें मौजूद हैं, ऐसी मिसालें मौजूद हैं जो वहाँ पे इतने दीनदार नहीं थे, यहाँ पे आए बहुत दीनदार हो गए, ऐसी मिसालें मौजूद हैं जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दीनदार थे, यहाँ पे आए तो फिर कुछ और ही हो गया, ऐसी मिसालें भी मौजूद हैं वहाँ से यहाँ आया कोई फ़र्क नहीं पड़ा, यहाँ से वहाँ गया कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मिसालें सारी मौजूद हैं। ये अब मिसालों से मसला हल नहीं होगा, किससे हल होगा, ये केस टू केस स्टडी करनी पड़ेगी, हर आदमी को अपने लिए खुद फैसला करना पड़ेगा कि भाई मैं जब यहाँ पर आया क्या तब्दील हुआ मेरे लिए। अच्छा, एक यहाँ पे सिर्फ एक बात अर्ज़ करता चलूँ जल्दी से, और वो ये है कि भाई बाज़ औक़ात तब्दीली वो जो मेंढक का कानून है वैसी होती है, मेंढक का कानून, ये पॉलिटिकल साइंस में भी इस्तेमाल होता है, वैसे तो इसको साइंस में इस्तेमाल होना चाहिए था लेकिन पॉलिटिकल साइंस में भी इस्तेमाल होता है, साइकोलॉजी में भी इस्तेमाल होता है, और दीन के मामले में भी हम इस्तेमाल करते हैं। वो कानून क्या है, कानून ये है कि मेंढक को टेम्परेचर का ग्रेजुअली चेंज होना बेचारे को पता नहीं चलता, तो अगर आपने किसी मेंढक को मजबूर कर लिया कि वो पतीली में ठहर जाए, ये तो फुदक फुदक कि वो जान खत्म हजाब कर देगा आपकी भी और अपनी भी, वो ठोकेगा नहीं। लेकिन अगर वो ठहर गया और आपने उस पतीली के पानी को, उसमें पानी भरा हुआ हो और आपने उसके पानी को इंतहाई आहिस्ता आहिस्ता गर्म किया, सही है, तो ये मेंढक उबल जा, उबल के मर जाएगा और इसको पता नहीं चलेगा कि उबल के मर जाएगा। लेकिन अगर आपने इसको बाहर से निकालकर गर्म पानी की पतीली में डाला तो ये किसी सूरत में नहीं टिकेगा वहां पे। क्या मतलब? ये ग्रेजुअल चेंज ऑफ टेम्परेचर को समझ नहीं पाता। हम इंसान भी कमोबेश ऐसे ही हैं, हमारे अंदर एक ग्रेजुअल चेंज आता है जो हमें डेड कर देता है। बाज़ औक़ात हमें कुछ समझ में नहीं आता, हम समझते हैं हम वही हैं। इसको चेक करते रहिएगा। अच्छा, ये भी देखिएगा कि इसको चेक कैसे करेंगे। चेक कौन करेगा? मैं ही करूंगा, और मैं ही डेड हूं तो मैं क्या चेक करूंगा। तो इस खातिर मैं बाज़ औक़ात ये अर्ज करता हूं कि देखो, थोड़े थोड़े छोटे छोटे कुछ आप अपने लिए पैरामीटर सेट कर लीजिए, जिसको आप लोग पैरामीटर्स कहते हैं, वो सेट कर लीजिए और उसमें चेक करते रहिए कि आप इस स्केल पे कहां पहुंचे। मसलन मैं ऐसी इंतहाई आला मिसाल अर्ज कर दूं, कहते हैं कि भाई वो शहीद सानी थे, वो किसी जगह पर गए और वो सुबह को उठे तो फजर की अजान हो रही थी, तो रोने लगे। तो किसी ने पूछा क्या हुआ, क्या हुआ? उन्होंने कहा तुम देखने मसलन, उन्होंने ऐसा कहा कि भाई मेरी नमाज शब कजा हो गई। तो उन्होंने पूछा कि फिर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि अगर पीछे कोई गलती ना की होती तो ये कजा क्यों हुई, कुछ तो हुआ है, सही। तो ये लोग अपने लिए जगहें चुन चुन के लगाते रहते थे कि भाई ये नहीं होना चाहिए था और ये हो गया। अब हमारे साथ क्या होता है? हमारे साथ ये होता है, जैसे मैं पहली दफ़ा पहले आपकी खिदमत में अर्ज कर चुका हूँ, मिसाल शायद सही हो, शायद इतनी ज़्यादा आपके लिए दिलचस्प ना हो, वो ये कि जिन खानदानों के यहाँ दीनी मुकद्दसात एक ख़ास सतह के ऊपर थे, अब उन्हीं खानदानों के उन्हीं अफराद उम्र गुजरने के बावजूद उन दीनी मुकद्दसात को अहमियत नहीं दे रहे, ये क्यों हुआ? जबकि अगर पाकिस्तान या हिंदुस्तान के माशरे को देखो तो जितना उम्र गुजरती जाती है तकद्दसात की अहमियत बढ़ती चली जाती है, तो यहां ये रिवर्स क्यों हो रहा है? अच्छा, अब क्या खुद वो जज कर पाएगा कि मैं तब्दील हो रहा हूं? मैंने कहा बहुत मुश्किल है, ये कोई नहीं मानेगा। अब एक सादा सी बात है, मसलन आज से 40 साल पहले, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, बुरा नहीं मानिएगा, आप ये सोच सकते थे कि कोई मजलिस में बैठो अपने जेब से सिपारी निकाले खाए? यहां रूटीन में खाते हैं। तो आप कहेंगे भाई क्या मसला हो गया अगर सिपारी खा ली? नहीं, कुछ और भी खा लो, मसला तो कुछ नहीं होता है। लेकिन ये पता है कि अगर ये ट्रेंड बढ़ेगा तो क्या होगा, ये तो मुझे पता है कि फिर ये बढ़ेगा तो फिर कहां पहुंचेगा? बढ़ेगा तो ये होगा कि यहां पे किसी भी चीज का कोई तकद्दस बाकी नहीं रहेगा। और ये दीन की हिस्ट्री में कंफर्म पैटर्न है। आप, मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं, रेनेसांस की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें और आपको इसको स्टडी करना चाहिए कि अगर एक दीन को आपको तबाह करना हो तो आप कहां से शुरू करते हैं। एक सिंपल काम से शुरू करते हैं, दीन के नाम पर लतीफे बनाओ। ये जो दीन के नाम पे लतीफे बनेंगे ना, ये दिलों में दीन का एहतराम घटा देंगे, मजाक मजाक में। पहले मजाक मजाक में घटाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो सेंसिटिव होना वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो अब आप जाके मिसाल के तौर पर देख लें, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जनाब अली एक कार्टून बन रहा है, उसमें फला पैगंबर बाइक पे बैठे हुए फलानी के साथ जा रहे हैं, तो ये क्यों बना रहे हैं इसे? और क्यों इमाम खुमैनी ने पहला हमला जब हुआ तो कहा ये इसे वाजिबुल कत्ल? उनको पता था ये चेन चलेगी, इस चेन को लोग नहीं रोक पाएंगे, और जब नहीं रोक पाएंगे और इस तरह इज्जतें पामाल होना शुरू हो जाएंगी, ये तकद्दसात खत्म हो जाएंगे सारे। तो उन्होंने कहा कि इसको पहले दिन ही पकड़ लिया जाए। इस खातिर उन्होंने बहुत बड़ी एक मुश्किल उठा ली अपने लिए और ईरान के लिए। देखिए, उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के नबी की इज्जत की खातिर ये उठाएंगे, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। तो ये हमें और आपको सोचना चाहिए कि भाई ये जो तब्दीली आती है ये अंदर ही अंदर आती है, और बदकिस्मती से। अच्छा, एक बात और भी अर्ज करता चलो, ऐसा ना कि बिल्कुल वन साइडेड हो जाए, बस तब्दीलियाँ अच्छी हैं जो आ जानी चाहिए थी, बस तब्दीलियाँ अच्छी थी। मसलन बस जगह के ऊपर हमारी सोसाइटीज़ में अपनी कंजर्वेटिव नेचर की वजह से कुछ ऐसे काम होते हैं जो काबिल तहम्मुल नहीं है, دین بھی نہیں کہتا، خود کرتے ہیں کلچرل بیس کے اوپر۔ ہاں انہیں تبدیل ہونا چاہیے، اور جو یہاں پہ آتے ہیں وہ فوراً اس تبدیلی کو احساس کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ تھوڑا سا ریشنالٹی بڑھتی ہے تو وہ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں۔ اور لیکن سوال یہ ہے کہ بھائی یہ جب آپ گندم پیس رہے ہوتے ہیں تو گھن اور گندم سبھی پیس دیتے ہیں اور سبھی کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں؟ ہاں یہ بھی ہوتا ہے۔ تو کون یہاں پر، کون سی ایسی پارٹی ہے جو اس کو ڈسٹنگوش کرے کہ بھائی یہ پاکستان ہندوستان کی کلچر میں وہ کلچرل ایشوز تھے جن کا تعلق دین سے نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کی کنزرویٹو نیچر سے ہے، اس کو آپ تبدیل کر لیں، اور یہ وہ چیزیں تھیں جن کو اب مت ہٹائیے گا، یہ اگر آپ نے ہٹا لیا تو آپ کا دین ختم ہو جائے گا۔ یہاں پہ کوئی ایسی باڈی نہیں ہے ہمارے پاس، اور یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس جو ویسٹرن کنٹریز میں سینٹرز ہیں ان سب کی ایک مشکل ہے، ایک دو کی بات نہیں ہے، سب کا ایک مسئلہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان کے پاس اکیڈیمک اسٹرینتھ کا کوئی ادارہ نہیں ہے، ہے ہی نہیں، صرف ریچولز کو پورا کرنے کے ادارے ہیں، اکیڈیمک اسٹرینتھ کا کوئی ادارہ نہیں ہے۔ کسی کے پاس ریسرچ پیپر نہیں نکلتا۔ اچھا کوئی ذرا مجھے سینٹرز بتائے جس کا کوئی ایک ریسرچ پیپر کوارٹرلی نکلتا ہو، اصلا کام ہی نہیں ہے یہ۔ وہ سامنے کہہ دے گا بھائی یہ قوم کر لے، نجف کر لے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ بھائی تمہارا کام نہیں ہے لیکن مشکلیں تو تمہاری ہیں، یہ کون سالو کرے گا اسے؟ اور کیا مثلا نجف اور قوم بیٹھ کر وہ آ کر ٹورانٹو کے فلاں سینٹر کی پرسنل مشکلات کو اور اس کی کمیونٹی کی مشکلات کو گائیڈ کریں گے کیا؟ یہ پوسیبل نہیں ہے اصلا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ آپ کوئی اکیڈیمک بیس ایسی بنائیں جو اکیڈیمک بیس ان سے کانٹیکٹ کرے، فنڈامنٹل ان سے لے، یہاں کے گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کرے اور کمیونٹی کو گائیڈ کرے۔ لیکن ہمارے ساتھ مشکل یہ کہ ہم جس کو لیتے ہیں اس کو صرف چند ریچولس کو دینے کروانے کے لیے لیتے ہیں، اس سے زیادہ نہ ہمیں کام ہے نہ اس کو کوئی کام ہے۔ یہاں پھر رزلٹ یہ ہوگا، ہماری قوم جو ہے وہ، ہمارے بچے پتہ نہیں کہاں، ہم کہاں، اور ہم سب لوگ، بہت ساری کمیونٹیز جو ویسٹ میں دیکھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں بھائی یہ کون ہے کمیونٹی، تو میں کہتا ہوں یہ کمیونٹیز ہیں انسینٹیو کیئر یونٹ کی، یہاں وہ بوڑھے بیٹھے ہیں جو اپنی موت کا انتظار کرنے آئے ہیں میرے جیسے۔ جوان غائب ہو چکے ہیں اور اب وہ بیٹھے ہیں جن کو پتا ہے کہ یار کچھ عرصے کے اندر مرنا ہے تو ایک سینٹر کے ساتھ لگے رہو تاکہ کم از کم فیونرل اچھا ہو جائے، باقی تو کچھ ہوا اللہ مجھے۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ۔ لکھا ہے جیسا کہ ہر شعبے میں اور ہر ادارے میں اچھے برے لوگ ہوا کرتے ہیں اور کرپشن بھی کسی نہ کسی طرح پائی جاتی ہے، مگر کیا یہ کہنا درست ہے کہ پاکستانی آرمی پاکستان کے مسائل کا ذمہ دار ہے، ساری خرابیوں کے پیچھے یہی ہے؟ جیسا کہ ایک مثلا نعرہ لگایا جاتا ہے یہ جو فنا ہے اس کے پیچھے فنا ہے مثلا، تو یہ تھوڑا سا میں بھی سینسر کرتا ہوں، تو سب کچھ تو بتا دیا، خیر ان سے نعرے سے بچنے کے لیے، وہ پکڑ لے گئے کوئی، بھائی تم نے یہ نعرہ لگایا تھا؟ نہیں ہمیں نعرہ نہیں لگایا تھا، واللہ نہیں لگایا تھا۔ تو ہاں یہ بات بالکل معقول ہے، بہت اچھا لکھا ہے جس کسی نے لکھا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ کیا کہ ہم یہ کہیں گے بھائی ایک ہی سارا ذمہ دار ہے، ساری خرابی اللہ بلا سر ملا، یہ صحیح نہیں ہے بھائی، سب لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں، سارا ملا ہی کیوں ذمہ دار ہوگا؟ سمجھ رہے ہیں ہم وہ کیا کہتے ہیں ہمارے معاشرے میں، کہتے ہیں اللہ بلا جو مصیبت کس کا، سر ملا، مولوی کے سر پہ، یہ سب کا ذمہ دار نہیں بھائی، سب مشترکہ ذمہ دار ہو، مولوی بھی مریخ سے نہیں آتا ہے، تمہاری اندر سے نکلتا ہے، جو کچھ بھی ہے تم ہو بھائی، ہمیں اور کون ہے یہاں پہ؟ تو مثال کے طور پر وہ جو وہاں پہ آ رہے ہیں آرمی میں آ رہے ہیں، یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ ہماری فیملیز ہیں جو وہاں گئی ہیں، انہیں کے بھائی بھتیجے یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے کہیں نہ کہیں، وہ کہیں باہر سے نہیں آئے بھائی، اسی قوم کے ہیں وہ لوگ بھی۔ تو اور مثال کے طور پر یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ بھائی جو سب سے مقتدر ادارہ ہے، اگر وہ 50-60 سال قوم کی نفسیات کو صحیح کرنے کی خلوص دل سے کوشش کرتا تو یہ صحیح ہو جاتی۔ یہ بانڈ خراب تو نہیں ہے نا، یہ قوم ایسا تو نہیں، کوئی بھی قوم ایسی نہیں ہوتی۔ ایک سادہ سی بات ہے بھائی، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں جہاں پر اس وقت رولز اینڈ ریگولیشن کی ایک بہرحال اوبیڈینس پائی جاتی ہے، تو اس کی ریزن کیا ہے؟ کیا مثلاً 400 سال پہلے 500 سال پہلے ساری قومیں ایک جیسی نہیں تھیں؟ کم و بیش ایسے ہی تھا، یا حتیٰ اگر میں کہوں کہ نہیں تھی، نہیں تھی، بلکہ انڈیا بہت آگے تھا، تو بات بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، یہ انڈیا پرشیا یہ کافی آگے تھے، یہ تو خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتے تھے یورپین جو انڈیا اور پرشیا کے اندر موجود تھا۔ तो अब उसके बाद इनके और इधर तब्दीली क्या आई है? तो मैं इसको इस तरह से समझता हूँ अपनी तरफ से, दो दफ़ा मैंने मैं कर दिया, यानी समझ में मुझे ऐसे आता है। वो क्या, वो ये कि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर एक एजुकेशनल सिस्टम है जो करप्ट था, इंसान को ख़राब कर रहा था, जो कुछ भी था, बहरहाल एक एजुकेशन सिस्टम था, वो अपना काम कर रहा था और कौम को जहाँ ले जाना चाह रहे थे वहाँ ले जा रहा था। लेकिन हम लोगों के साथ क्या हुआ, हमारा जो भी एजुकेशन सिस्टम था वो इन्वेजन्स के दौरान डेलिबरेटली और एक्सीडेंटली ख़त्म हो गया, और उसके बाद रिप्लेसमेंट में जो सिस्टम लाया गया वो कौम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं लाया गया था, वो कौम को ग़ुलाम बनाने के लिए लाया गया था। ये डिफरेंस है। और जो मुल्क आज़ाद हुए तो वो भी एजुकेशन सिस्टम को प्लांट ना कर सके, ये डिफरेंस है। अब मिसाल के तौर पर अगर मुझे याद आ जाए, उस राइटर का नाम फ्रेंच राइटर था और उसने इनकलाब फ्रांस जो लेट 18 सेंचुरी में आया था उसके ऊपर तबसरा किया था, और उसने किताब लिखी थी अराउंड 1825 के करीब, मेरे जहन से बिल्कुल उसका नाम भी निकल रहा है, किताब का नाम भी निकल रहा है, लेकिन उसने इनकलाब फ्रांस के बाद जो एजुकेशनल रिफॉर्म हुआ था 19 सेंचुरी के स्टार्टिंग में, कब की बात कर रहा हूँ मैं, आज से कह सकते हैं 200 साल पहले की, तकरीबन 200 साल पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, फिर नेपोलियन हार गया और जो कुछ भी हुआ, जो एजुकेशन रिफॉर्म हुआ था उसको उसने स्टडी किया। ये किताब है अराउंड 1820 की जो मुझे याद आता, उसमें वो लिखता है कि एक सर्टेन टाइम के ऊपर एक सर्टेन एज ग्रुप के सारे फ्रेंच बच्चे एक ही लेसन पढ़ रहे होंगे। क्या मतलब, यानी मसलन अगर एक फ्रांस में एक बच्चा है जो नॉर्थ में रहता है और एक साउथ में रहता है और दोनों की एज 7 साल है मसलन, तो मसलन 21 अक्टूबर को जो बच्चा नॉर्थ में 7 साल पढ़ रहा होगा वही साउथ में भी 7 साल पढ़ रहा होगा। सही, ये एजुकेशन सिस्टम की स्ट्रेंथ है। अच्छा, अब हमारा एजुकेशन सिस्टम को देख लीजिए, उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ओ लेवल, सेकेंडरी, आखान बोर्ड, फला फनू और दीनी तालीम और कुछ भी नहीं। ओ माय लॉर्ड, ये क्या हो रहा है, आप ये कौन सा सिस्टम है ये? अच्छा, उन सिस्टम्स की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी क्या है? अगर आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं, एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी बच्चों को रोबोट्स बनाना कि वो अच्छे सरमायादार बन सकें, अच्छा पुर्जा बन सकें। गवर्नमेंट में चले जाएं तो वो जानवर बनाने के माहिर, कभी मुर्गा बनाते हैं कभी सीधा कर देते हैं, तो वो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर ये हो रहा है। अच्छा, बाकी दीनी मदरसों के अंदर चले जाएं, वहाँ पे कुछ और ही कहानी चल रही है, वो एक डंडा मार रहा है फला काफिर वो लगा हुआ जना। ऐसा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ सारा का सारा ऐसा ही है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही है। सही, अब इस एजुकेशन सिस्टम से कैसी कौम बननी है? अब अगर कोई ये कहे इसकी जिम्मेदार ये इस्टेब्लिशमेंट है, एक सेंस में सही है। अगर आपने 50 साल इस कौम के एजुकेशन सिस्टम को सही करने के ऊपर लगाया होता तो अब कम अज़ कम हमारे पास कुछ सही होता। इग्नोर किया उसको डेलिबरेटली, या इग्नोर करवा दिया गया जो कुछ भी किया हमने, उसके बाद कौम का क्या असर होना चाहिए? ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किसी बच्चे को बगैर ड्राइविंग सिखाए उसको गाड़ी दे दें और उसको बताएं बेटा ये ब्रेक है और ये एक्सेलरेटर है, बाकी तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अब वो बच्चा क्या करेगा? वो करेगा जो कराची में हो रहा है। सही, ये कौम के साथ जुल्म है। इस सेंस में एस्टेब्लिशमेंट जिम्मेदार है। अभी हम क्या हर चीज के जिम्मेदार हैं? भाई वो नहीं कर रहा था, कुछ और भी कर लेते लोग। दीन भी जिम्मेदार है। क्या मतलब भाई, अगर पाकिस्तान का फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम अपना काम नहीं कर रहा था, कम से कम जो इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम रिलीजन के तहत चल रहा था, कम से कम वो अपना कुछ काम कर लेता। हमने भी वही हरकत की। हमने क्या हरकत की? हमने पूरा रिलीजियस इंस्टीट्यूशन किस पे रख दिया? जज्बात के ऊपर। और उस जज्बात में जो सर फहरिस्त जज्बा था वो क्या था? नफरत। वो कैसे, कहीं भी चले जाओ दुनिया में, कहीं चले जाओ, यहाँ वहाँ पाकिस्तान इधर उधर, मैं जितना मूव कर रहा हूँ वो मूव कर रहा हूँ, और उसमें मुझे एक जुमला कतन यकीन से मैं कहता हूँ, बहुत कम कोई एक्सेप्शन है, वो क्या है कि हमारे मोमिनीन दूसरों को जहन्नम में धकेल के इतना खुश होते हैं जो खुद जन्नत में जाके खुश नहीं होते। मैं अभी आपके सामने शेर पढ़ूँ ना कि आप जन्नती हैं, तो आप कहेंगे वाह 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 वाह, लेकिन अगर मैं सामने पढ़ूं कि आपका दुश्मन जहन्नमी है, ओहो क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। ये हमारा काम है, भाई तुम खुद जन्नत में जाने की सोच लो, अगर जन्नत में जाना ही कमाल है तो कम से कम उसकी सोचो, दूसरे को जानना में भेज के तुम्हें क्या मिलने वाला है, उससे क्यों इतने ज्यादा खुश हुए चले जा रहे हो है? अब ये जब दीन आपका जो इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है वो अपने इमोशंस के ऊपर चल रहा है, और इमोशन भी एक नेगेटिव इमोशन के ऊपर, अच्छा मुमकिन है कोई कहे कि नहीं इसके अंदर एक पॉजिटिव इमोशन है, वो एक ज़ाहिर अहले बैत की मोहब्बत है, दीन की मोहब्बत है। भाई ये तो देखो कि तुम जिससे मोहब्बत कर रहे हो उसने इंसानियत के साथ क्या किया था, उसने इंसानियत को जहन्नम से बचाने के लिए जान की बाजी लगाई है। सैयदुल शुहदा आशूर के दिन लोगों के सामने खुद इरशाद फरमा रहे थे कि शायद कोई वहां से निकले, और फरमाते थे कि अगर तुम नहीं भी निकलना चाह रहे तो इतनी दूर चले जाओ ताकि तुम इस अजाब का शिकार ना हो। वो तो जहन्नम से बचा रहे थे लोगों को। और मौला अमीर मोमिनीन फरमाते हैं अल्लाह के नबी के लिए कि तभी मुंदवा और उन बिथेबेही, वो ऐसे तबीब थे जो अपनी दवाइयां लेके बाजार में जाते थे, किसी को देखते थे उसको जख्म की जरूरत है, लगाने की जरूरत है तो लगा दिया करते थे। तो जिनसे हम मोहब्बत के नाम पर ये कर रहे हैं उन्होंने लोगों को जहन्नम में नहीं धकेला है, उन्होंने लोगों को निजात दिलाई है, उनकी मुश्किलों में काम आए, उनका एक तरीक़ाकार है जिसके ऊपर उन्होंने 250 साल सख्ती और नरमी के ज़माने में अमल करके दिखाया है। तो हम नहीं कह सकते कि हम मोहब्बत में ये काम कर रहे हैं, वो कुछ और हो जाएगा। फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बहुत अजीब सवाल किया है, अल्लाह रहम करे, शायद उन्होंने वो ना चाहो जो मैं बोलने वाला हूँ, लेकिन बहरहाल मैं अर्ज करता हूँ। कुड यू प्लीज शेड सम लाइट ऑन शियाज एंड शियत इन अफ्रीका, स्पेशली व्हाट इज द रीजन फॉर सप्रेसिंग शेख ज़रज़की एंड हिज मूवमेंट। अच्छा, इसमें दो पहलू हैं, एक तो वो पहलू है जो इन्होंने पहले पैराग्राफ में पहले सवाल में कहा, और दूसरा वो पहलू है जो इन्होंने प्रिसाइज कर दिया दूसरे सवाल के अंदर। तो इन्होंने जो दूसरा सवाल किया वो सुनने के लिए कम तकलीफ दे, लेकिन वो जो पहला सवाल है जो शायद वो सुनना भी नहीं चाहते हो वो सुनने के लिए ज़्यादा तकलीफ दे। तो मैं दूसरे से शुरू करता हूँ। वो जो कम तकलीफ दे है वो ये कि भाई ये शेख ज़की को सप्रेस क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए सप्रेस कर रहे हैं कि अगर शेख ज़की की मूवमेंट चल निकली तो न सिर्फ नंबर एक नाइजीरिया की डिक्टेटरशिप को चैलेंज होगा, नंबर वन, नंबर टू सऊदियों की हेजमोनी जो उन्होंने रिलीजियस हेजमोनी पूरी दुनिया में मचाई हुई है वहाबियत और फंडामेंटलिज्म के जरिए से, वो चैलेंज होगी नंबर टू, नंबर थ्री रिसोर्सफुल अफ्रीका अपने पाँव पे खड़ा हो सकेगा, और ये किसी को पसंद नहीं आएगा, शायद एक मौके पे हमें भी पसंद ना आए, क्यों इस जुल्म में हम भी शरीक हों कहीं पर। बिलाखिर ये जो अफ्रीका लूट रहा है, वाकई लिटरली लूट रहा है, इसका कुछ फायदा हमें भी मिल रहा है, इस गंगा में हम भी हाथ धो रहे हैं बहरहाल कहीं ना कहीं। तो मिसाल के तौर पर कॉफी पीनी है या नहीं पीनी है? हाँ पीनी है, तो ये कॉफी उग कहाँ रही है? लैटिन अमेरिका में मसलन, उसको उसका हक मिल रहा है? नहीं। ये जो ज्वेलरीज बन रही हैं इनमें डायमंड्स लग रही हैं, डायमंड आ कहाँ से रहे हैं? ज्यादातर अफ्रीका से। उनको हक मिल रहा है उनका? नहीं। इतनी रिसोर्सेज अफ्रीका से आ रही हैं, इनको इनका हक मिल रहा है बेचारों को? आप यकीन मानिए, आप में से जो लोग जा चुके हैं वो तो जा ही चुके, देख चुके हैं, आप अफ्रीका में मूव करें और आप इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट ना सोचें तो फिर ये समझ लें इंग्लैंड उसके सामने कुछ भी नहीं है। फिर इतना खूबसूरत, इतना नेचुरल, इतना ग्रीन अफ्रीका, हम समझ रहे हैं अफ्रीका सिर्फ एक वो सहराए गोभी है जहाँ पे सिर्फ मिट्टी उड़ रही है, घात, नहीं भाई ऐसा नहीं है, अफ्रीका बहुत खूबसूरत है, आप खुद जाके देख लो कितना खूबसूरत जगह है वहाँ पर। हत्ता ये मसल जैसे कंट्री लाइक मेडागास्कर, जिसका बेचारे का कहूँ नाम है ना निशान है, मैंने एक दफ़ा एक ट्रैवलिंग की इसकी नॉर्थ साउथ में, चूँकि ये भी स्ट्रेच कंट्री जैसे पाकिस्तान है, जैसे चिली है, नॉर्थ साउथ जैसे नॉर्वे है, तो मैंने इसकी नॉर्थ साउथ एक दफ़ा ट्रैवलिंग की 9 घंटे की बाय रोड, तो बाज़ जगह के ऊपर मैं ऐसे देख के लगता था, मैंने कहा भाई ये सीन मैंने यूरोप में भी कहीं कई दफ़ा देखा है, ये क्या हो रहा है? इतना खूबसूरत जगहें थी वहाँ पर, लेकिन सिर्फ क्या मुसीबत थी, पूरे कंट्री को नॉर्थ से साउथ तक जो रोड में ला रही थी वो 2 लेन की थी, 2 लेन की रोड, दैट्स इट, उसी पे ट्रॉलर चल रहे हैं, उसी पे गाड़ियां चल रही, उसी में गड्ढे आ रहे, और पूरा कंट्री 2 लेन की रोड पे चल रहा है। तो ये डिजास्टर है उनका। अब ये कि ये बेचारे ऐसे कैसे हो गए, इनके पीछे क्या अवामिल थे, किसने इनको इस हालत पे लाके खड़ा कर दिया, और मसलन लैटिन अमेरिका के साथ क्या हुआ, इनके साथ क्या हुआ, ये तो लंबी कहानी है। तुम इंशाल्लाह जब इमाम तशरीफ लाएंगे तो उन जालिमों का पर्दा खुलेगा। पहला सवाल, सम लाइट ऑन शिया एंड शियत इन अफ्रीका। शिया और शियत का अफ्रीका में जकजकी से पहले जो कारनामा है वो कैसा कारनामा? हाँ, ये मैंने कहा था, ये वो तकलीफ दे पार्ट है जो इस सवाल पूछने वाले ने भी शायद ना सोचा। अगर मैं बहुत माजर के साथ, एक जुमला मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है, मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूँ, अफ्रीका लूटा नहीं है, जिस तरह इज्जत लूटती है ना ऐसा लूटा है, दौलत लूटती है ऐसे नहीं लूटा, जैसे इज्जत लूटती है वैसा लूटा है। अच्छा, इसमें पार्शली हमारे भी कुछ लोग शरीक हैं, हमारे भी कुछ लोग शरीक हैं, यानी मिसाल के तौर पर हम एक, हम से मेरा क्या ताल्लुक है उन लोगों से, लेकिन मैं हम में करके लमेट रहा हूँ उसको, वो ये कि बहरहाल हमारे जैसे कुछ दोस्त अहबाब उस अफ्रीका में इतने पावरफुल थे कि अगर वाकई दीन फैलाना चाहते होते जिस तरह अहले बैत चाहते थे, तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि अफ्रीका कम से कम आधा तो शिया ही होता, इतने पावरफुल थे। और शायद थे का लफ्ज भी शायद सही नहीं है, शायद बाज़ जगहों पे अभी भी इतने ही हैं, लेकिन सिर्फ एक मुश्किल है, वो ये कि क्या हम इन्हें इंसान समझते हैं, क्या हम समझते हैं? अच्छा, आप कहेंगे कि नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हम होते तो हम बेहतर होते। मैं यहाँ पे अगर उनको ले आया, उन अफ्रीकन्स को जिनको उनको उन्होंने गलत ट्रीट किया था, तो मैं यहाँ पे गारंटी से कह रहा हूँ कि हमारा ट्रीटमेंट 70-80% का वही होगा, वही होगा। अच्छा, क्यों भाई इतनी गारंटी से कह रहे हैं? सादा सी एक बात है, मैं एक दफ़ा पंजाब में एक शहर में गया, ये गड़बड़ हो जाएगी, ये मामला कुछ और हो जाएगा, फिर ये मैं अर्ज़ करता चलूँ, हमने भी अपनी कम्युनिटीज़ के साथ जो हमारे अंडर कंट्रोल थी यही किया। मिसाल के तौर पर मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ, मसलन फ़र्ज़ करें कराची में मैंने एक इमाम बारगाह बना लिया, और उस इमाम बारगाह में कराची के मसलन शोरफा अहले तशय्यो तशरीफ़ लाते हैं, सही है। अच्छा, उसमें सिंध के देहात का कोई एक बिल्कुल ही उजड़ आदमी मजलिस में आ गया, कितना रिसेप्शन होगी उसकी, कितना रिसीव किया जाएगा? अच्छा, उसकी खवातीन हमारी खवातीन के दरमियान जाके बैठ गई अपने बच्चों के साथ, तो क्या होने वाला है? अपने कपड़ों के साथ, अपने बच्चों के हाल हुलिये के साथ, और उसी हाल हुलिये के साथ ये बंदा यहाँ पर हमारे दरमियान आकर बैठ गया कराची में, यहाँ तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, कराची, एक्सेप्ट किया जाएगा वो? यही कुछ उन्होंने उनके साथ किया, और ऐसी ऐसी मिसालें कायम की कि बस मैं, शुक्र है कि मैं उस टेस्ट में नहीं पढ़ा, लेकिन बहरहाल देख कर खून खोल जाता था। एक अफ्रीकन कंट्री में मैंने खुद इमाम बारगाह के बाहर लिखे देखा कि नमाज के वक्त के अलावा, अब ब्लैक्स के लिए एक टर्म इस्तेमाल की गई थी, उनका अंदर आना मना है। मैंने उस सेंटर के डायरेक्टर से कहा कि बंदे खुदा, ये तुमने क्या कर दिया, इस तरह तो मत करो, ये तो हमारी तो बिल्कुल ही मामला ही तुमने चौपट कर दिया, यानी क्या तबलीग और क्या बातें और क्या गुफ्तगू। तो उसने कहा कि नहीं, मैं इनको नहीं आने दूंगा। मैंने कहा क्यों? कहने का ये आते हैं टॉयलेट ख़राब कर देते हैं। क्या मुसीबत है, टॉयलेट साफ़ करने के लिए एक बंदा रख लो, तो लेबर इतना सस्ता है यहाँ। कहने का नहीं, वो ये करते हैं, फिर वो हमसे अपनी लड़कियाँ, हमारी लड़कियाँ भी मांगेंगे कि हमसे, हमारी बच्चियों से शादियाँ भी करेंगे फिर वो। अच्छा, पहली बात तो कि अगर वो शादी कर लेते तो क्या मुसीबत आ जाती तुम्हारे सर के ऊपर। दूसरी बात ये कि मैंने खुद उस कंट्री में नेटिव खातून को, जो मुसलमान थी और उनका नाम बीबी के नाम पर था, चेयरमैन साहब को घुटने के ऊपर बल टेक कर कप देते देखा है, मैंने खुद देखा है। ये जरूरत करेगी कि चेयरमैन साहब से उसकी लड़की या उसकी लड़की का रिश्ता मांगे? इसमें तो खड़े होने की जरूरत नहीं है। ये सब फजूल बातें, हम उनको इन्फीरियर समझते हैं, हम उनको अपने जैसा इंसान नहीं समझते हैं। असल मुश्किल हमारी ये है, हम एक डिस्टेंस के ऊपर उनको रखना चाहते हैं। मैं एक दफ़ा एक जगह गया अफ्रीका में, वहाँ पे जनाब मैं स्पीच कर रहा था, अब मैं तो खैर उर्दू में भी क्या करता हूँ, मैं इंग्लिश में भी कुछ हिस्सा बोलता था, तो अब वो तो बेचारों के ऊपर क्या जुल्म बीतता होगा। भारत तो वो कुछ जो नेटिव अफ्रीकन थे वो भी आते थे, 3-4। तो मैंने कहा कि भाई तुम लोग वैसे आते हो, अच्छी बात है, ये जो मैं बोलता हूँ ये समझ में आ जाता है? कहने कहा समझ में आ जाता है। तो मैं थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिली मैंने, मैंने कहा अगर तुम्हें समझ में आ जाते तो बाकी क्यों नहीं आते फिर, तो तीन ही क्यों आते हो? कहने लगा तुम्हारे ख्याल में ये जो हमें बैठे हैं ये हमें पॉजिटिव नज़र से देख रहे हैं क्या? ओह, मैंने कहा ऐसे बात तो सही है कि तुम्हें पॉजिटिव नज़र से नहीं देख रहे। कहने लगा इन्होंने बताया हमारे साथ क्या ड्रामा किया, इन्होंने हमारा अलहदा इमामबारगा बना दिया और कह रहे तुम लोग वहाँ किया करो। तुम्हारा इमामबारगा अलहदा है, तुम लोग वहाँ क्या करो, यहाँ ज़्यादा मत आया करो। जब आप ये करेंगे तो उस कॉन्टिनेंट में शियत फैलनी है। ये ज़कज़की से पहले की कहानी थी। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इंकलाब इस्लामी के बाद वहाँ के लोकल्स गए कुम, उन्होंने पढ़ना शुरू किया, नजफ गए पढ़ना शुरू किया, और फिर वहाँ से जब वापस आए तो अब उससे बहुत बेहतर रिकॉर्ड हो गया जो हम लोगों का था। यानी क्या, सब कॉन्टिनेंट के वो लोग जो वहाँ जाके बसे हुए थे उनके मुकाबले में बिल्कुल ही चेंज हो गया मामला, चूंकि वो तो उनके अपने भाई बंदे थे। फिर तो उनका जो इन्फ्लुएंस था वो फिर बहुत ज़्यादा था, और उनके अंदर दर्द भी था अपने कौम के लिए। हम तो किसी भी तरह चला रहे थे उनको। यानी मसलन अब कहने की क्या बात है, बहरहाल एक कंट्री के अंदर जब बला आई, मुसीबत आई और सारे सब कॉन्टिनेंट से मरबूत शिया वहाँ से निकाल दिए गए, तो वो जो इमाम बारगा था वो 2,500 की कैपेसिटी का था। सही है, 2,500 की कैपेसिटी का इमाम बारगा मैंने अपनी आंखों से देखा है, और 2,500 की कैपेसिटी की मस्जिद थी, और तकरीबन इतनी कैपेसिटी का लेडीज़ का इमाम बारगा था। इतनी बड़ी बड़ी 3 बिल्डिंग्स बहुत बड़े इलाके के ऊपर था। और जब इन सबको वहाँ से फरमाया गया कि निकल जाएं, जो जुल्म था या इंसाफ था हमें नहीं मालूम, तो एक भी नेटिव शिया नहीं था जो इसकी पोजिशन ले सके। और कितने बंदों की कैपेसिटी थी वहाँ पर? 2,500 की। इसका मतलब यह है कि बहरहाल अच्छे टाइम पे वहाँ पे 1,500 कम से कम शिया की आबादी रह रही थी, शिया फैमिलीज रह रही थी, 1,500 शिया फैमिली। और उन 1,500 शिया फैमिलीज ने एक नेटिव शिया नहीं किया था जो इनके जाने के बाद उस प्रेमिसेस को बचा सके। फिर वहाँ पे फौजी रहे थे कई साल तक, ये हम सबको पता है। तो हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है वहाँ पे, और इस वजह से वो बाज़ औक़ात चिढ़ते भी हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन ये जो नेटिव्स आए और ये जो अफ्रीकन माशाल्लाह जैसे शेख ज़कज़की और दूसरे जैसे इदरी सली नाम करके एक थे वो आए, इन लोगों ने बेचारों ने बहुत मेहनत की फिर, और ये लोग उनकी मैंटेलिटी भी समझते थे, बात भी समझते थे, काम करना जानते थे। ये हुआ क्या सबब है कि 40 से पहले इराक में मुजाहरे रुक गए मगर अब नहीं रुक रहे? इसके ऊपर मैं थोड़ा तबसरा कर चुका हूँ। एक बेस यकीनन है, अगर कोई ये कहे कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि इराकियों में कोई बेस नहीं है मुजाहरा करने की, तो वो तो यकीनन है फैसिलिटीज़ नहीं है कि ऑस मचा हुआ है, और जो जो मैंने अर्ज़ किया कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस अपना काम नहीं कर पा रहे, वो मोर और लेस वही जो पाकिस्तान के अंदर है, थोड़ा सा उसको और बढ़ा दें। फिर उसके बाद उनको जाहिर है कि एक महरूमियत का एहसास है कि भाई 40 के ऊपर 3 करोड़ लोग आते हैं, इतना पैसा आता है पूरी दुनिया से, जाता कहाँ है वो, और वो इनजस्टिस के अंदर वो पैसा इधर से उधर, उधर से इधर होता रहता है। तो जाहिर है कि इन सब बातों से उनको गम गुस्सा है, लेकिन ये कि बहरहाल जो हो रहा है वो नहीं है जो हमें बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिखा है कि दुनिया के इस हिस्से में हम लोग ज़्यादातर मालूमात को सिर्फ कंज्यूम करते हैं और एनालिसिस की ताकत नहीं है, अगर कर भी लें तो अमल क्या करें ये एक और मुश्किल है। तो इन्होंने 3 लेवल बनाए, एक तो सिर्फ मालूमात है, एक मालूमात का एनालिसिस है, और उस एनालिसिस के पीछे प्रैक्टिकल क्या करना है प्रैक्टिस में। तो इन्होंने कहा कि ये मसला है, मसलन इन्होंने लिखा है कि सऊदी अरब को गाड़ियाँ कैनेडा ने भेजी जो यमन में और बहरीन में इस्तेमाल हुई, यानी वो आर्मर्स भेजे होंगे, क्या कुछ और किस तरीके से आवाज़ उठाई जा सकती है? अच्छा, इसमें मेरा अपने ख्याल है ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमारे जैसा आदमी कि जो किसी माहौल के अंदर रहने वाला नहीं होता और बाहर से आता है, मतलब मैं आऊँगा यहाँ पे 20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए, और फिर चला जाऊँ, फिर किसी दिन आया 20-25 दिन के लिए चला गया, और इसी तरह बहुत सारी जगहों के ऊपर मैं आता जाता रहूँगा, तो मेरे अंदर एक बड़ी एक फ़ायदे की चीज़ है वो ये कि मैंने मुख्तलिफ एनवायरमेंट्स देखे हैं, तो मुझे ये समझ में आ सकता है कि मसलन ये काम यहाँ हो सकता है लेकिन नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं यहाँ का एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो ये तो हो सकता है कि मैं समझूँ कि भाई ये काम यहाँ पे सही नहीं हो रहा, जैसे मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। लेकिन मैं ये कहूँ कि अब मैं रिकमेंड करता हूँ कि इस जैसे इशू के अंदर आप क्या करना चाहिए आपको, तो मैं इसका एक्सपर्ट नहीं बन पाऊँगा। क्यों? इसके बहुत सारे ऐसे डायनेमिक्स होंगे जो मेरी नज़र में 20 दिन में नहीं आएंगे। मसलन एक सादा सी बात है, वो ये कि ये मिसाल के तौर पर एक ऐसा इशू है, मसलन फ़र्ज कर लेते हैं, अभी हम इसको एज्यूम कर लेते हैं सही हो गया, वो ये कि भाई कैनेडियन गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, अमेरिकन गवर्नमेंट ने, यूरोपियन कुछ गवर्नमेंट्स ने सऊदी अरब का साथ दिया है। अच्छा, हम सबको मालूम है मसलन सद्दाम की जो जितनी भी केमिकल वेपन्स थे इसमें सबसे ज़्यादा जर्मनी इन्वॉल्व था, सबसे ज़्यादा जर्मनी इन्वॉल्व था। इस तरह बहुत सारी जगहों के ऊपर डिक्टेटर्स को सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक और लिबरल सोसाइटीज सपोर्ट करती हैं। सही। अच्छा, इस पर आवाज़ उठाने वाले सिर्फ हम हैं या इस सोसाइटी के अंदर भी कुछ लोग होंगे जो आवाज़ उठाते होंगे? यकीनन होंगे। सही। अच्छा, क्या मैं उन लोगों को जानता हूँ, क्या उनसे अटैच हो पाया हूँ? नहीं, ज़ाहिर है मैं 20 दिन में सब नहीं कर पाऊँगा। तो आपको ख्वाह ना ख्वाह यहाँ पर जो रहने वाले एक्सपर्ट्स हैं उनसे ओपिनियन लेनी पड़ेगी कि भाई इस मामले को उठाना किस अंदाज में। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर मैं हूँ कराची का बंदा। अच्छा, कराची का बंदा जब उठाता है तो बाद से पहले पत्थर उठा लेता है। सही है। अब कनाडा में कोई इस बात को उठाए तो कैसे उठाए? अब मैंने अगर रिकमेंडेशन देना शुरू कर दी तो ये तो मामला ख़राब हो जाएगा फिर। सही है। तो मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे आदमी को इस मामले में नहीं कूदना चाहिए, इसमें एक्सपर्ट्स यहाँ के होने चाहिए, वो इसका जायज़ा लें कि भाई यहाँ पर सबसे ज़्यादा मौसर काम क्या हो सकता है, कौन कौन सी लोकल पार्टीज़ हैं जिनको सामने रख के काम करना मुनासिब होगा, किसके साथ बैठना सही होगा, किसके साथ बैठना सही नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा डेप्थ चाहिए होगी। हम लोग चीज़ों को, मेरा ख्याल है, बहुत सतही तौर पर डील करना चाहते हैं, ये नहीं हो पाएगा। एक डेप्थ की ज़रूरत होगी, उस डेप्थ में जाना पड़ेगा। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इज देयर अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन रिलेशन टू पाकिस्तान इंडिया चाइना सिनेरियो? और दूसरी बात थी पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट स्टांस ऑन कश्मीर। पहले दूसरे वाले को अगर देख लें तो यूं समझ में आता है जैसे पाकिस्तान इंडिया दोनों बिलाआखिर कश्मीर के ऊपर थके हुए हैं, ये समझ में आता है। इन दोनों कंट्रीज़ का कश्मीर के इशू पे जंग करने का मूड नहीं है। हाँ, खेलने का मूड दोनों का है, ये बात समझ में आती है। ये दोनों जंग नहीं करना चाहते हैं कश्मीर के मसले के ऊपर। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट रेज करते हैं, दोनों अपने अपने नंबर बनाना चाहते हैं, ये दोनों खूब अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। इसमें डर ये होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई तुम नंबर बनाने के लिए कोई ड्रामा करो और तुम्हारे हाथ से ड्रामा निकल जाए, जैसे कि अभी फरवरी में गेम होते होते रह गया कि भाई डर लगा कि ऐसा हुआ कि मामला गया, लेकिन फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोल हो गया और मामला फिर वापस आ गया। लेकिन हर पार्टी ने अपना गेन कर लिया, मोदी साहब को भी गेन हो गया, वो भी आ गए और यहाँ पर सुरखुरु हो गए सब, यहाँ हमारे वाले भी पैसा कौन? कश्मीर। जैसे हर ड्रामे में पिस्ता कौन है? पाकिस्तान की आवाम। मुजाहिद भी बनता है, शहीद भी बनता है, और रिवॉर्ड फिर भी कुछ नहीं मिलता, अंदर बैठा होता बेचारा, ये होता है। हम तो वो बेचारे कश्मीरियों के साथ भी ऐसे ही हुआ। अच्छा, फाइनली कश्मीरियों को क्या करना चाहिए? एक हल है जो हमेशा मसलन रहबर मौजम जैसे लोग भी सबको कहते हैं, भाई कौमें जब तक अपने पाँव पर खड़ी नहीं होंगी कुछ नहीं होने वाला। हमारे साथ भी ऐसे ही, हम लोग अगर किसी और का इंतज़ार करेंगे ये सब नहीं होता है, हमें अपने पाँव पे खड़ा होना होता है। तो यहाँ वाले लोग भी ऐसे ही हैं, पाकिस्तान के अंदर जो शिया हैं वो भी ऐसे ही हैं। अगर पाकिस्तानी शिया इसका इंतज़ार करें ना कैनेडियन शिया हमारे लिए कुछ करेंगे, हिमाकत है। ये तो खुद बिछारे हुए हैं यार, कहाँ से कह रहे हो? या मतलब आप अपना इंतज़ार कर रहे हैं कोई आपके लिए कुछ करेगा? भाई कहाँ से करेंगे? सब लोगों को एक भाईचारगी है, एक उखुवत है, दोस्ती है, ताल्लुक़ है, जज्बाती भी है, मुश्किल में काम आने का भी है, ये सब कुछ है। लेकिन बहरहाल हर कौम को अपने पाँव के ऊपर खड़ा होना होता है। अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीरियों को मेरे ख्याल में ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है और वो इसको करना चाहते हैं। अब ये कि उनको ज़ाहिर है कि 50-60 साल की एक मैंटेलिटी डेवलप हुई भी है, उसमें उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और इंडिया ज़ाहिर है कि पावर में भी है, स्ट्रेंथ में भी है, तो एक बहुत लंबी जंग करनी पड़ेगी। जो इसने ड्रामा किया है, जो उनकी स्पेशल स्टेटस को ख़त्म किया है, तो ये समझ लें कि एक नई जंग शुरू कर ली इसने। अब ये एक नई जंग शुरू हुई है, अब ये जंग कितने साल चलेगी, 50 साल 60 साल, इसका नहीं मालूम क्या होगा। लेकिन सबको मालूम है इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली, पूरी दुनिया को पता है, मेरा ख्याल में इंडिया को भी अच्छी तरह पता है। इससे सॉल्व नहीं होगा। अब वो क्या करना चाह रहे हैं, शायद वो समझते हैं कि ये भी एक गेन है जो हम टेम्परेली बाहर कुछ गेन कर लें, फिर बाद में देखा जाएगा, शायद वो ये सोच रहे हो। क्या लिखा है, क्या पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन पाकिस्तान इंडिया चाइना। देखिए, जो मुझे अभी तक समझ में आता है, दुनिया में इस वक्त के हालात में कोई मुल्क जंग नहीं चाहता है बेसिकली। हाँ, बाद वक़्त हमाकतों में फंस जाते हैं तो जंग ही करनी पड़ती है, लेकिन बेसिकली जो समझ में आता है, कोई मुल्क जंग नहीं चाहता। अगर किसी मुल्क के अंदर जंग की कोई ख्वाहिश हो तो वो मुल्क होगा जिसको ये पता हो कि अदरवाइज भी मरना ही है, तो फिर वो कहेगा कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो वो होगा वो जो कहेगा कि ठीक है बेटा, क्या वो जफंग आयत क्या कहते हैं हम लोग, तंग आमद बेजंग आमद। तो वो ऐसा कोई ड्रामा हो जाए तो हो जाए, वरना तो इस वक्त कोई चांस नहीं किसी का, किसी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। दुनिया में जो रिसोर्सेज के एतबार से सबसे रिच कंट्री है इस वक्त वो चाइना है, और चाइना बगैर जंग लड़े जीत रहा है तो वो कोई हिमाकत नहीं करेगा कि जंग लड़े। वो कभी भी नहीं जंग लड़ना चाहता, चाहे उसके नाक के नीचे आप जंग लड़ो, फिर भी कहता है लड़ो, तुम खुद लड़ो, मैं नहीं लड़ रहा। तो वो उनका काम वैसे ही निकल रहा है। तो बाकी जो है, बाकी सबकी हालत ख़राब है। वो जो अमेरिका बोलता रहता है ईरान को हम ये कर देंगे, हर चीज़ टेबल के ऊपर है, तो वो टेबल पे नहीं रखो, मारो, जाओ मार के दिखाओ, ताकत है तो मारो भाई, ख़त्म करो मामले को। 40 साल से लिए बैठे हैं हम टेबल पर, टेबल पर नहीं आओ, मैदान में उतरो, तुम्हारे फौजों में दम नहीं है यार, साफ बांधो, सबको पता है। आधे तो बेचारे फिलिपाइनी और इधर उधर के भरे में अमेरिकन फौज के अंदर, वो काम नहीं है अमेरिका के लिए। वो नेशनलिटी लेने के लिए बेचारे आते हैं, उनको बेचारों को फंसा देते हैं कि 4 साल में तुमको ये कार्ड मिल जाएगा, वो कार्ड मिल जाएगा, वो चले जाते हैं। वो एक बंदा बता रहा था, अरब एक कंट्री के अंदर होता है, वो लॉजिस्टिक का काम करता है, वो शिप्स वगैरह को सप्लाई करता है। तो कहने का कि वो अमेरिकन आर्मी का शिप लगा, तो उसमें से बंदे निकले, उनकी लॉजिस्टिक का ख्याल करना था। कहने का शिप निकला तो लगा जैसे फिलिपाइनी आर्मी उतर गई, इतने फिलिपाइनी थे उसके अंदर। तो ये कौन कहाँ लड़ेंगे बेचारे, उनका दम नहीं है इस तरह का कोई। अच्छा जरा, डू यू थिंक डोनाल्ड ट्रंप इज अ बिगर थ्रेट टू ग्लोबल इकोनॉमी देन ब्रेग्जिट। कंपैरिजन नहीं है, लेकिन मेरा अपने ख्याल है कि हमें, मेरा अपने ख्याल है जो मुझे समझ में आता है वो ये कि एक बात तो है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई थ्रेट नहीं है, इसके पीछे कुछ है वो थ्रेट है। ये तो भाई एक बंदा है, हम लोग क्यों भूल जाते हैं कि भाई बिलाखिर सिस्टम्स होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, ये पीसेस होते हैं जिनको हसब ज़रूरत लाया जाता है। जैसे मैंने अर्ज़ किया आपकी खिदमत में कि भाई हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, वो एक दफ़ा किसी को लेके आती है करप्ट बेवकूफ़ आदमी, एक दफ़ा किसी को लाते हैं करप्शन भी नहीं है, आदमी भी बंदा ढंग का लगता है, कम अज़ कम बोलता है तो लगता है कि हाँ को बोल रहा है भाई, वो जो दूसरा है वो तो बिल्कुल ही आपे से बाहर, उसका समझ में ही नहीं आता। यानी हमारे तो ऐसा वाकई आलम रहा है। आपने वो किताब, मशहूर किताब पढ़ी होगी यकीनन, उर्दू अदब से अगर थोड़ा सा भी सरोकार है, कुदरतुल्ला साहब की शहाबनामा। तो उसको पढ़ के जो मेरी फीलिंग पहली दफ़ा जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे ये समझ में आ गया कि भाई हमारा एक ग्रेजुएट हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से ज़्यादा अक्लमंद होता है, ये मुझे फ़ौरन समझ में आया उसको पढ़ के। और ये मालूम है कि वो लाए जाते हैं, इसीलिए लाए जाते हैं कि उनको ये साबित करना है कि ये सब बेकार का काम हो रहा है। तो अब आप देखें वो जाकर जब खड़े होते हैं बातें करते हैं तो उनकी बातों में वो जिसको हम लोग कहते हैं ना दूध पीते बच्चे की बू आ रही होती है कि इसको भाई इसका काम नहीं है, इसे कहीं और भेज दो, तो वो डेलिबरेटली सब आ रहे होते हैं, तो ये उनकी ज़रूरत होती है। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, बल्कि एक थ्योरी यही होती है जब मैंने अर्ज़ किया कि भाई आप दिखाते हैं कि क्योस है, दरअसल क्योस नहीं होता, आप डेस्परेट होते हैं, आपको ये दिखाना होगा वरना ये काम हो ही नहीं सकते थे। इन्होंने कुछ काम ऐसे किए हैं जो क्योस के अलावा हो ही नहीं सकते थे, और होना यही है कि आखिर में इनको जाना है। और फिर अगर अमेरिकन सिस्टम सर्वाइव कर गया तो वो यही बोलेगा कि भाई एक पागल गलती से आ गया था और उसने अपना ड्रामा मचाया और अब वो चला गया, और हम पहले भी अच्छे थे, हम अब भी अच्छे हैं, बीच में एक्सेप्शनली एक आदमी आ गया था। तो भाई अगर वो एक्सेप्शनली आया था तो अब जितने काम किए थे उसको वापस लाओ फिर, अगर तुम वाकई सच हो। तो ये तो नहीं होने वाला, जो वो कर जाएंगे वो कर जाएंगे, 2-4 हरकतें तो कर चुके हैं वो ले गए एम्बेसी वहाँ पे ले गए, ये सारी हरकतें इन्होंने कर ली। तो मेरा अपने ख्याल है कि ये अफराद जो हैं वो निशानी नहीं बनते। हाँ, अब ब्रेक्जिट का जैसे मामला है तो वो जैसे आप, मैंने भी अर्ज़ किया था कि भाई ब्रेक्जिट के बारे में ज़ाहिर है दो ओपिनियन, बहुत कॉमन ओपिनियन सबके जहनों के अंदर, वो ये कि भाई इनका अपना गेम है, ये कंट्रोल क्योस है, और दूसरा ये कि नहीं कंट्रोल क्योस तो था लेकिन ये अब आउट ऑफ कंट्रोल है, جو کچھ بھی ہے. تو مثلا میری اپنی اوپینین ہے اس سیکنڈ والے کے اوپر زیادہ ہے اس وقت کم از کم, کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے تو اپنے گیم میں بہت آگے جاتا ہے, لیکن اب جو کچھ ہو گیا یہ بچپنا ہو رہا ہے, جو کچھ یو کے اندر اس وقت ہو رہا ہے یہ یو کے جیسے میچور کنٹری کے لیے بہت بچپنا ہو گیا. تو اس کو بھی کہنا کہ یہ بھی کنٹرول کیاوس ہے, میرا اپنے خیال ہے کہ یہ اب کنٹرول سے باہر ہے, یعنی اس کو کہنا کہ یہ انہوں نے کنٹرول کر کے ڈیلیبریٹلی کریٹ کیا ہے, میرا اپنا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے, یہ ان کا کنٹرول نکل چکا ہے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ جو جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا سوسائٹی کی فیبرکس, فیبرکس ادھڑ رہی ہیں اب وہاں پر. تو یو کے بہت بری حالت میں میرا اپنا خیال ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے. اس کے جو سوسائٹی کے جتنے بھی بنے ہوئے تھے جوڑ ایک دوسرے کے ساتھ, وہ سب خراب ہو رہے ہیں, اور ان کو اب اس جیسے معاملے کے بعد سیریسلی سوچنا پڑے گا کہ ہماری سوسائٹی کا ہوگا کیا. بھارت ایک لحاظ سے میں خوش کیا ہوتا ہوں, خوش اس بات پہ ہوتا ہوں کہ تم نے پوری دنیا کو کیاوس میں ڈالا تھا, تو تمہارے ساتھ وہی گیم ہو گیا جو تم نے پوری دنیا کے ساتھ کیا تھا. لیکن بہرحال وہاں پر بھی انسان بسے, ان کو بھی زندگیاں گزرنی ہیں. ایک سسٹم کی غلطی بہرحال عوام اٹھاتی ہے, مصیبت ساری ہے سسٹم کی غلطیاں اٹھاتی عوام ہی ہے. کیا شام کی زمین اب اسد کی حکومت کے کنٹرول میں ہے؟ زیادہ تر, بہت کم حصہ جو رہ گیا جو شام اور ترکی بارڈر کے نزدیک ہے وہ کم نہیں ہے, لیکن زیادہ تر ہے. ایران کے اقتصادی حالات کا مستقبل, ایران کے اقتصادی, اچھا تھوڑا سا اردو میں چل جائے گا معاملہ. خیر انہوں نے لکھا ہے کہ دو جملے بولے, انہوں نے دو جملے خاص کر لکھا ہے, دو جملے, بہت برا نہیں ہے, انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا. دو جملے کہتے ہیں نا, دو جملے بول دیے بہت برا نہیں ہے اور انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. چلیے درود بھیجے محمد و آل محمد. اگر بندہ ہوشیار ہوا نا تو اگلی دفعہ میں جب مجلس میں کہوں گا میں دو جملے اس معاملے پہ بولتا ہوں, یہ میرے دو جملے پہ پکڑ لے گا مجھے, کہے گا اچھا جب ہمارے دو جملے تھے تو دو تھے اور تمہارے دو جملے تو پوری کتاب بولتے ہو تم لوگ. نہیں, ایران کی اکانومی کے اندر ظاہر اسٹرینتھ کے پوائنٹ بہت زیادہ ہیں, اس میں بھی پرابلمس ظاہر ہیں. مثلا پرابلمس کیوں ہیں ساری دنیا کو پتہ ہے, ایک پرابلم باہر سے ہے سینکشنز اور یہ اور وہ, اس سے بڑی ایک اور پرابلم ہے وہ اندر ہے, اندر کرپشن ہے. ایران کے سسٹم میں ٹھیک ٹھاک کرپشن ہے, اور وہ کرپشن بعض اوقات بلینز میں آتا ہے, یعنی مثلاً جب آپ اس کے کرپشن کو حساب لگائیں تو جن کو بعض اوقات سزائے موت وغیرہ بھی ہوئی ہے, تو مثلا ایک بلین یورو سے زیادہ کے کرپشن بہت دفعہ ہوئے ہیں, ایک بلین یورو سے زیادہ کی کرپشن. اور وہ جو تیل کے معاملے میں ایک بندہ پکڑا گیا تھا, اس کا نام بھی میرے دماغ سے نکل گیا, اس کی فگرز تو انسان سن سن کے پریشان ہوتا تھا, وہ 18 بلین یورو کی بات کیا کرتا تھا. تو بعض کرپشن وہاں پہ ٹکا کے ہوئے ہیں, جس کو پہلے دوست ہمارے کہتے ہیں ٹکا کے ہوئے ہیں وہاں پر, اور وہ کرپشن ظاہر اتفاقی نہیں ہے, یہ سسٹمیٹک اگر کرپشن نہ ہوتے تو اتنے ہائی لیول کے اوپر نہیں ہو سکتے تھے. تو بہرحال سسٹم کے اندر کوئی ہے پرابلم جہاں پہ کرپشن ہو رہے ہیں, اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمپلیکس کرپشن کسی کمپلیکس پارٹی کے کریٹڈ ہیں. مثلاً یہ لوگ جو سافٹ ویئر کے اندر وہ آتے ہیں, وائرسز آتے ہیں, تو وہ سگنیچر بتا دیتا ہے کہ اس وائرس کو کریٹ کرنے میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے, ایک پورا مثال کے طور پر کنٹری ہے, یا مثلاً اس کنٹری کی کوئی بہت اتھارٹیٹیو ایجنسی ہے, تو وہ وائرس کا سگنیچر بتا دیتا ہے. تو ایران کے اوپر جو مثلا نیوکلیئر پاور پلانٹ کے اوپر جو وائرسز اٹیک کرتے ہیں وہ سگنیچر ہوتے ہیں, کہ کم از کم بھی اسرائیل سوچو تو بات بنے گی, سعودی جیسے کی بس کی نہیں ہے. تو اب ان کے اندر جو کرپشن اتنا کمپلیکس کرپشن ہے, اس کا مطلب ہے کسی بہت کمپلیکس پارٹی نے اس کرپشن کو کریٹ کیا ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ سوچیں, وہ قدیم زمانے کی باتیں, وہ جو اینرون کا کرپشن پکڑا گیا تھا اور وہ ان کے جو آڈیٹرز تھے وہ سارے بڑے ڈیلائٹ اور فلاں فلاں تھے, تو کیا وہ کرپشن سمپل اکاؤنٹنٹس کی کرپشن ہو سکتے تھے؟ تو آپ کو سوچنا پڑے گا کہ نہیں بھائی, یہ کوئی بہت ایکسپرٹ لیول کے اوپر جا کے کرپشن مچایا ہے, تب کہیں جا کے یہاں پہ بات پہنچی ہے $6 بلین مثلا ایسے. اب اگر ایران کے اندر بظاہر ایک چھوٹا سا آدمی $1 بلین کا کرپشن کر رہا ہے, صحیح ہے, یا یورو کا کرپشن کر رہا ہے, اور یہ ایک نہیں ہے, دو نہیں ہے, ایک سے زیادہ ہے, دو سے زیادہ ہے, اس کا مطلب ہے کوئی بہت کمپلیکس پارٹی ہے جو ان کرپشنس کے لیے ایک گراؤنڈ پریف کرتی ہے اور پھر اس کو سپورٹ کرتی ہے اور اس کو لے کے چلتی ہے. اچھا, بعض اوقات اس پارٹی کا آبجیکٹیو $1 بلین کمانا نہیں ہوتا, کیوس ڈالنا ہوتا ہے. تو بعض اوقات مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی ایک کرپشن کریٹ کرتا ہے, کہتا ہے 500 ملین تو رکھ لے, 500 ملین میں رکھوں گا, तो यहाँ वाला तो लगता है वो पैसे भी नहीं रखता है, जो ऑर्गेनाइजर है वो कहता है तू सारा ही खा ले, क्योंकि उसको ये पता होता है कि मैंने 1 बिलियन का करप्शन इसको 1 बिलियन खाने दिया है, लेकिन जिस कंट्री को मैंने नुकसान पहुंचाया वो नुकसान 1 बिलियन से बहुत ज़्यादा का है। तो ये ड्रामा वहाँ पर है, मुश्किल है काम। इन्होंने लिखा कि यू मैंशन दैट एस्टैब्लिशमेंट इज इन कंट्रोल एंड कैन डू वट एवर टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स, कैन यू प्लीज क्लैरिफाई वट आर एस्टैब्लिशमेंट्स ऑब्जेक्टिव्स आफ्टर ऑल विच इट्स ट्राइंग टू अचीव। ये वो कॉम्प्लेक्स जगह है जो मैं पहले इशारे में कह चुका हूँ कि आप ऑब्जेक्टिव एस्टैब्लिशमेंट के ऑब्जेक्टिव्स में, नंबर वन, क्या ये सिर्फ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, नंबर वन मैं फेवर नहीं करूँगा, नंबर टू पर्सनल प्लस इंस्टीट्यूशनल है इसका लाइकली चांस ज़्यादा है, नंबर थ्री पर्सनल प्लस इंस्टीट्यूशनल प्लस कंट्री की फेवर भी है इसका चांस बहुत ज़्यादा है। यानी मसलन वहाँ पर एक बंदा है जिसका फला फला रैंक है, इतने उसके पास ओहदे हैं, तो वो कुछ ऐसा काम करता है कि उसके पर्सनल कुछ ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाते हैं, हाँ ये करते हैं, लेकिन वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स पूरे करने के लिए इंस्टीट्यूट को नुकसान पहुंचा दे, नहीं वो ये नहीं कर सकता, वो ये नहीं कर सकता। अच्छा वो इंस्टीट्यूट को फ़ायदा पहुंचाए और कंट्री को डुबो दे, ये भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कंट्री नहीं हुआ तो ये इंस्टीट्यूट भी नहीं बचेगा, ठीक है। तो तीनों के मफादात का एक बैलेंस क्रिएट होगा जिसमें इंस्टीट्यूट बहरहाल पावरफुल है, इंस्टीट्यूट सब्सटेंशली पावरफुल है, लेकिन हम ये कहेंगे इसने इम्पर्सनल मफादात और नेशनल इंटरेस्ट को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया है, नहीं ऐसा नहीं होता। तो ये एक बैलेंस है। मिसाल देखिए, इस बैलेंस की एक निशानी है जो मुझे समझ में आती है, मुझे कि ये वो वाहिद थर्ड वर्ल्ड कंट्री है जिसमें मोर देन अराउंड हाफ ऑफ इट्स लाइफ आर्मी रूल में रही है और आर्मी में कभी बगावत नहीं हुई है। ये दूसरी जगहों पर नहीं होता है। वहाँ पर अगर आर्मी रूल में नहीं होती, जैसे इंडिया कभी रूल में नहीं रही, तो वहाँ कोई बगावत भी नहीं होगी। अगर रूल में होती है, जैसे इराक, जैसे सीरिया, जैसे लीबिया, जैसे दूसरे कंट्रीज, यहाँ पर बगावतें होती हैं। लैटिन अमेरिका, अगर आर्मी रूल में रहती है तो बगावत होती है, और इस कंट्री के तकरीबन आधे टाइम पे आधी आर्मी रूल में रही है लेकिन एक दफ़ा भी आर्मी में बगावत नहीं हुई है। अच्छा क्यों नहीं हुई है? दो रास्ते हैं आपके पास। एक हैं कि इसके इंडिविजुअल्स इंतहाई मुत्तकी परहेजगार हैं, इन्होंने अल्लाह की बंदगी में कभी नाफरमानी नहीं की है। तो भाई ऐसे तो आप और मैं भी नहीं है, साफ बात है। तो ये क्या हुआ है? हुआ ये कि इंस्टीट्यूट ने अपने और पर्सनल बेनिफिट्स को, इंटरेस्ट को एक बैलेंस दे दिया है। ये भी कम कारनामा नहीं है, ये भी बहुत बड़ा कारनामा है कि पाकिस्तानी इस्टैब्लिशमेंट ये कर कैसे सकी है कि उसने अपने बेनिफिट्स में, इंस्टीट्यूशनल बेनिफिट के अंदर, इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट के अंदर और पर्सनल इंटरेस्ट के अंदर एक ऐसा बैलेंस क्रिएट किया है कि वो पर्सन कभी भी बगावत की ना सोचे, कभी भी बगावत की ना सोचे। और इसके साथ साथ उसने कंट्री को भी जिंदा रखना है, कंट्री भी ऐसा ना हो कि ख़त्म हो जाए। क्यों? क्योंकि बिलाखिर हमारा एक मशहूर मारूफ मकूला है जो पाकिस्तान में चलता है, वो कहते हैं कि हर मुल्क की एक आर्मी है, हमारी आर्मी का एक मुल्क है। तो बिलाखिर ये मुल्क उस एस्टैब्लिशमेंट को चाहिए, अगर वो नहीं हुआ तो वो कहाँ से करेगी इसके ऊपर काम। तो ये तीनों के दरमियान, बहुत शुक्रिया, तीनों के दरमियान एक बहुत ही, आप लोग क्या लफ्ज इस्तेमाल करें, डेलिकेट बैलेंस है जो इन्होंने स्ट्राइक किया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ कभी बगावत नहीं होती। ये बहुत बड़ा कारनामा है, आप इसको छोटा मत समझें जो उन्होंने किया है। पाकिस्तान में मुजाहरे कब तक जारी रहेंगे? अच्छा हाँ, फजलुर रहमान साहब का मामला, हाँ ये भी बहुत अच्छा हुआ याद आ गया, हम तो भूल बैठे थे। हाँ अच्छा, फजलुर रहमान साहब के मामले में दो बातें हैं। हाँ, उर्दू में एक मुहावरा है, तो आप इस्लाह कीजिएगा, मैं भूल जाता हूँ बाज़ औक़ात, गीदड़ की जो मौत आती है तो शहर का रुख करता है, ये एक उर्दू में मुहावरा है, सही। अच्छा इसका एक साबका है, इसका साबका है मसलन हामिद रिजवी साहब, वो क्या नाम था, हामिद रिजवी नाम था, क्या नाम, खादिम रिजवी साहब, खादिम रिजवी साहब, उनका एक मामला था। और कमोबेश यहाँ पर होता ऐसे ही है, खासकर रिलीजियस पार्टीज में, तो उनको जब किसी की हवा अच्छी तरह निकालनी हो तो वो उसको इस्लामाबाद भेज देते, तो वहाँ जाओ और जो तुम्हारे तीर तरकश में तीर हैं वो तुम चला लो, और जब सारे चला लो तो फिर हम तुम्हें रिकॉर्डिंग में बिठाएंगे और तुमसे कहेंगे तुमने चीफ जस्टिस की ये एहानत की, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुम पे 36 केस चलेंगे, ये होगा ये होगा, और अब तुम्हारे पास एक रास्ता है कि माफ़ी मांगो और इन सबसे अपनी वफादारी का इजहार कर लो, जो खादिम रिजवी साहब ने किया। अच्छा, मुमकिन है कोई जवाब में कहे कि भाई खादिम रिजवी साहब जो है वो कोई इंस्टीट्यूशनल शख्सियत नहीं थी, वो पॉप अप हुआ था एक आदमी, और उसका तो खैर होना भी यही था, लेकिन ये जो बंदा है ये एक इंस्टीट्यूशनल है, ये एक इंस्टीट्यूशनल है, ये बहुत गाहक है और ये बहुत एक्सपीरियंस यानी सीजन जिसको आप लोग कहते हैं सीजन प्लेयर है। तो ऐसा सीजन प्लेयर इतनी आसानी से इस्लामाबाद पहुंच जाए ये इतना आसान नहीं है, यानी अगर इसको कोई धोखा देकर भी ला जाए तो कोई बहुत बड़ी उस्तादी की है जिसमें ये धोखे में फंसा है, वरना ये खुद माहिर आदमी है। सही है, तो अब यहाँ पे दो चांस है आपके पास, हम ये कहेंगे बिलाखिर किसी का तो एक आखिरी दिन आता ही है, इसका भी आ गया। सही है, और इसके अगर ये उस्ताद है तो बाहर महा उस्ताद भी होते हैं, तो इस उस्ताद का भी कोई उस्ताद होगा जो इसको घेर घार के यहाँ तक ले आया और इसकी कहानी यहाँ पे ख़त्म करनी है। अच्छा, इसका चांस क्यों ज़्यादा है, इसलिए भी चांस ज़्यादा है कि वो FATF वाला क्या मामला है वो भी चल रहा है, उसके अंदर इनको फरवरी तक का टाइम मिला हुआ है, तो इन्होंने इससे पहले इस पर्सनैलिटी को आइकॉनिक बनाकर लुढ़काना है और दुनिया के सामने साबित करना है कि पाकिस्तान ने फंडामेंटलिज्म का खात्मा कर लिया। सही है, तो एक चांस ये है। अच्छा, दूसरा चांस ये है कि हम ये कहें कि नहीं, फजलुर रहमान को कुछ वीकनेसेस नज़र आ गई हैं, इस्टेब्लिशमेंट में उसकी चेन बन गई है, पहले से बनी हुई है लेकिन उसकी वाली चेन ऊपर आ गई है, और उस चेन ने उससे कहा कि देखो बेटा राइट टाइम है स्ट्राइक करने का, मार दो, मार दो और तुम जीत जाओगे। अच्छा, यहाँ पे एक मुश्किल है, साबिका पाकिस्तान का आखिरी 10-15 साल का इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। मसलन अगर किसी के जमा होने पे किसी ने गिरना होता तो इमरान खान और ताहिर कादरी का मामला कर लेता, वो भी बारगेन पे ख़त्म हो गया था, यानी बारगेन इन लोगों के दरमियान नहीं हुई थी, ये तो बेचारे किसी के कहे पे आए थे, जो लेकर आया था उसने नवाज शरीफ और उसके पीछे सऊदियों के साथ बारगेन सेटल की और इनसे कहा कि आपका काम ख़त्म हो गया, चाहें तो आप बैठे रहें चाहें तो आप वापस चले जाएं। ये चांस भी है, यानी एक चांस है कि आखिरी टाइम आ गया इनका, इनको यहाँ पर लाया गया, इनकी कुटाई होगी, जो कुछ भी होगा मामला ख़त्म, खादिम रिजवी केस। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये है कि नहीं, खादिम रिजवी केस नहीं है ये, जनाब अली गवर्नमेंट को के साथ कुछ लेन देन का मामला है और उस लेन देन के मामले पे बारगेन के कार्ड्स बढ़ाने के लिए इनको लाया गया है, ये ताकत का इजहार करेंगे, हुकूमत दबेगी और वो हुकूमत पीछे कुछ सेटलमेंट करेगी और इनसे कहा जाएगा कि सर आप चाहें तो बैठें चाहें तो आप वापस चले जाएं और मसलन आपका जितना खर्चा हुआ है वो हम कंपनसेट कर देंगे। इसको दूसरा मामला, तीसरा मामला ये है कि नहीं ये जेन्युइन केस है, एस्टैब्लिशमेंट इधर को मूव करना चाहती है, फारिग करना चाह रही है हुकूमत को, और वो एस्टैब्लिशमेंट कहती है पुराने प्लेयर को कि देखो तुम आज तक इतनी अथॉरिटी के साथ बाहर नहीं आए थे, आज तुमको हम चांस दे रहे हैं, बाहर आओ और इसको उठा के फेंको जिसको हम अब फेंकना चाह रहे हैं। अच्छा, ये चांस मुझे बहुत कम लग रहा है क्योंकि ये जो पार्टी इमरान खान की है बहरहाल एस्टैब्लिशमेंट कुछ प्लान्स के साथ इसको लेकर आई है, मेरा अपने ख्याल है कि ये टेम्प्रेरी प्लान नहीं था, इमरान खान का प्लान लंबा प्लान है और जो इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है वो भी इसको 3-4 साल के ऑब्जेक्टिव्स के साथ नहीं लाई है, सिवाय ये कि इमरान खान साहब ने कोई बहुत बड़ा ब्लंडर मार दिया इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील करने में, बेजाहिर तो नहीं लगता कि वो इतनी बड़ी कोई हिमाकत होगी। तो मेरा ख्याल नहीं है कि इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ इतनी बिगड़ गई हो कि इस्टेब्लिशमेंट ने एक ऐसा प्लेयर उतार दिया हो जो उसने 30 साल में नहीं उतारा था और उसको इस अथॉरिटी के साथ उतार दिया। मुझे जो ज़्यादा चांस लग रहा है वो पहला चांस लग रहा है कि इनका मामला एंड पर है। बहरहाल ये पाकिस्तान है, इसको क्या कहते हैं कि द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिकेट टीम है, इसका आपको पता है फिर क्या क्या कर लेती है। 17 साल का लड़का स्ट्रेट विकेट्स में लाकर रन आउट कर देता है और 35 साल का 300 वनडे खेला हुआ वो कैच गिरा देता है, यहाँ सब कुछ हो सकता है, तो यहाँ भी पता नहीं क्या हो सकता है। फजलुर रहमान लिखा है कि एस्टैब्लिशमेंट कौन है, भाई साहब थोड़ा ख्याल करो। अब लिखा है एस्टैब्लिशमेंट को आजकल कौन कंट्रोल कर रहा है, ओ माय लॉर्ड। सही कह रहे हो भाई, सही कह रहे हो। अच्छा, इन्होंने लिखा है कि एक मौलाना ने तकरीर में आज से 25 साल पहले कहा था अमेरिका को इसराइल कंट्रोल करता है और पाकिस्तान को अमेरिका कर रहा है। हाँ ठीक है, इतने गहराई नहीं है। हाँ सही कह रहे हो, सही, ख़त्म हो गया मामला। अब मैं समझा बहुत पीछे जाने का इरादा है, तो मैंने कहा भाई इतना पीछे नहीं जाओ, हाँ इतना चाहिए चल जाएगा, इस्टेब्लिशमेंट को अमरीका कंट्रोल करता है, मामला ख़त्म। अब ये ना पूछो कि इस्टेब्लिशमेंट कौन है, ये ना पूछो बस। इसके लिए आप अपनी अकल लड़ाओ, अपना काम जितनी भी महारत है उसको इस्तेमाल करो। ये वाकई बड़ा अजीब क्वेश्चन है कि ये जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया ना, ये बगावत नहीं होती, क्यों नहीं होती? आपने देखा कि मुशर्रफ साहब लेट नाइन्टीज में आए, आखिर वक्त तक बंदा इसरार करता रहा कि मैं वर्दी नहीं उतारूंगा, सही। अच्छा, यानी उसके पास एक यकीन था कि जब तक वर्दी है मुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा, सही। लेकिन एक सर्टेन टाइम तक नो 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 करने के बाद एक टाइम पर उसने कहा कि अब मैं उतार देता हूं। क्या मर्जी से उतार रहा था या बहरहाल फोर्स हो गया था? ये इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट एक वक्त तक अपने लीडर को भी गड़बड़ की इजाजत देता है, और एक जगह पे पहुंचकर लीडर समझ जाता है कि अब अगर मैंने मजीद गड़बड़ की तो इंस्टीट्यूट की फेवर मेरे हाथ से निकल गई है। उस वक्त फिर अपनी बका वो इसमें देखता है कि मैं बाहर जाके गेम खेल लूं, अब यहां बैठकर गेम खेलना खतरनाक होगा। ये बड़ी महारत की बात है, और ये इंस्टीट्यूट के लीडर्स को अच्छी तरह पता होता है कि कौन सा टाइम वो टाइम है जिसके बाद मेरा यहां पर बैठना मेरे लिए और इंस्टीट्यूट के लिए अच्छा नहीं होगा। जावलक साहब के साथ भी यही हुआ था, वो एक सर्टेन टाइम तक वर्दी लेके चलते रहे, उसके बाद उनको वर्दी उतारनी पड़ गई, और मुशर्रफ साहब के, और वो जाहिर है उसका कोई ताल्लुक रिटायरमेंट से नहीं था, वो तो उन्होंने एक्सटेंड करवाए थे। तो अब ये हिडन प्रोटोकॉल क्या है एक्सटेंशन का, ये भी हमें नहीं मालूम, लेकिन बहरहाल वो इनेक्ट हुआ है दो दफ़ा और उसने इंस्टीट्यूट को बचा लिया और अपने लीडर को बहरहाल फारिग करवा लिया दो तीन साल के बाद। लिखा है कि बहुत अच्छा सवाल है टीवी देखने वालों की तरफ से, क्या कराची के सफाई के इम्कान हैं? इधर वो टीवी देखने वाला कोई होगा और वो टीवी पे देखते होंगे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। देखिए, होने को तो सब कुछ हो सकता है, यानी वाकई अगर कोई ये कहे कि नहीं हो सकता तो ये बात बिल्कुल गलत है, होने को तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन सवाल ये कि क्यों हो, ये देखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर चलें, अब चूंकि आप लोग काफ़ी हमारे मुल्क में हंस चुके हैं, आपका भी है वैसे तो, लेकिन ये कि मसलन जो यहाँ पर होता रहता है सेंटर्स में लोगों में, ये सही नहीं हो सकता। होने को तो सब कुछ हो सकता है लेकिन क्यों हो, क्यों हो? अच्छा, दुनिया के मसलन पाकिस्तान के सारे शिया मौलाना मुत्तहिद हो सकते हैं, होने को तो हो सकता है लेकिन क्यों हो? अच्छा, आप कोई बचाया फिर? सबका एक ही केस है क्या? मतलब साफ बात, बिल्कुल साफ बात, एक जहालत और एक वो टेक्निकली इसको इस्तेमाल करते हैं लालच, या जहालत है या लालच है। जहालत किसकी है? जिसको ये नहीं पता कि करना क्या है, और लालच किसकी है? जिसको पता है कि करना ये है लेकिन मैं नहीं करूंगा, मेरा मफाद खतरे में। तो यहां दो से ज्यादा मसले नहीं होते, पूरी दुनिया के मसाइल के पीछे दो मसले होते हैं, या जहालत होती है या लालच होती है। अब पाकिस्तान भी ऐसे ही है, कुछ वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं इधर उधर हैं जो जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं करना क्या है, कुछ को पता है कि क्या करना है लेकिन वो करेंगे नहीं। आप हम भी ऐसे ही हैं, हमें 2+2=4 नहीं पता कि भाई ये सब कुछ होना चाहिए, पता है? तो अब आपके पास ऑप्शन है, या आप अपने आप को, मैं अपने आप को जहालत में रख लूँ या लालच में रख लूँ, ये मेरी और आपकी मर्जी है, लेकिन केस यही है, केस यही है। हाँ, ये कहें कि ये तो होने का काबिल ही नहीं है, नहीं ऐसा नहीं होता, होने को सब कुछ हो सकता है, होने को सब कुछ हो सकता है। वो तो बल्कि सफाई का जहाँ तक मसला है, तो आप सबको पता है दुनिया भर में कूड़ा आजकल सोना समझा जाता है, नॉर्वे कूड़ा इम्पोर्ट कर रहा है यार, जो अभी तक खबरें हैं हमारे पास, पता नहीं गलत ना हो, नॉर्वे कूड़ा इम्पोर्ट करता है। आप सबको मालूम है, हम सबको मालूम है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कूड़े को बर्न करके गर्म पानी की सप्लाई की सिस्टम 60s से काम कर रहा है, कौन सा रॉकेट साइंस है इसके अंदर? ये जितने जो हमारे पास वेस्ट के साइट बने, क्या कहते हैं उसको, जो डंप साइट्स होती हैं, लैंडफिल्स, इन लैंड फिल्स से क्या कुछ हो सकता है ये हम सबको मालूम है, कौन कौन सी गैसेस बन सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ से डेवलप हो सकती हैं, हम सबको मालूम है। अगर वॉक एंड ट्रैश के ऊपर कोई मेहनत करना शुरू कर दे क्या कुछ हो सकता है। पाकिस्तान तो ऐसा है कि भाई ऐसी जगह पे खड़ा है, आप 10% भी काम करेंगे ना विजिबल हो जाएगा डिफरेंस, क्योंकि जीरो पर थे तो हमने 10% भी काम करे तो विजिबल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्यों क्यों करें। और आप और मैं भी ऐसे ही हैं, ये देखिए मैं सादा सी एक बात अर्ज करूं, अभी आप यहां पर हैं, अच्छा अगर ये सिस्टम आपसे वो ना करवाता जो अभी आप कर रहे हैं तो आप क्या यही करते अपनी अकल से। अभी तो सिस्टम ने आपको एक डंडे के ऊपर रखा हुआ है, अगर ये नहीं करोगे तो ये फाइन होगा, ये नहीं करोगे तो ये होगा, कुछ नहीं करता तो वो बिल इतना बढ़ा देता है कि आप बिल ही पे ही नहीं कर पाएंगे। मसलन आप पानी जाया करने की जरूरत करेंगे यहां पे, कितना जाया करेंगे, बिल बढ़ेगा आपका, है ना। तो अगर ये ना होता तो आप क्या होते, आप भी वही कर रहे होते जो वहां पे कर रहा है। अच्छा निशानी क्या है, जब तक आप थे आपने किया था नहीं, किसने अपने घर के अंदर वाटर रिसाइकलिंग प्लांट लगाया, क्यों लगाया। तो ये एक दूसरे के ऊपर यानी
शोहरत दिल
एक ही है जो मैंने अर्ज किया, फंडामेंटल्स एक ही, बाकी ये गेम घूमता रहता है, कभी इधर चला जाता है कभी उधर आ जाता है, लेकिन ये सब गेम एक ही है। हम भी फोर्सफुल होते हैं तो कुछ कर लेते हैं, वो फोर्स ना हो तो नहीं करेंगे। आप भी ऐसी हम भी ऐसी। चल नवाज शरीफ को क्यों छोड़ दिया गया, वो उसमें सबको पता है कि भाई इन लोगों का मसला लेन देन का है। भाई देखें ये तो मसला नहीं है ना कि हमने एक आदमी ने जुर्म किया उसको सजा देनी है, ये मसला नहीं है। वो सज़ा देने के फिर तरीके ये नहीं होते हैं, सज़ा देने के तरीके कुछ और होते हैं, तरीका सारा सबको मालूम है, लेन देन का मामला है। मसलन अगर बहुत हम ऑनेस्टली सोचें और अपना ऑप्टिमिज्म दिखाएं तो हम ये कहेंगे भाई गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमें नवाज शरीफ को पकड़ के रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, पैसा दे चला जाए, लेकिन पैसा दे के जाए, बगैर पैसा दे ना जाए। अब उसके ऊपर सारी जो है वो खेचम तान चलती रहती है, कभी वो ले दे के इधर उधर हो ही जाएगा कुछ ना कुछ। आप अंदर के आदमी हमें क्या पता भाई, हाँ वो मैं अर्ज कर रहा हूँ भाई मुझे नहीं पता। इज देयर एनी वे टू कंट्रोल लो और बड़ा कोई आया, ओ हो हम जरा सुना सुने सुने, इज देयर एनी वे टू कंट्रोल पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, ओ माई लॉर्ड इफ नो कंट्रोल ऑफ इस्टेब्लिशमेंट हाउ कंट्री कैन रन। भाई ये तो हमें वो एक साहब ने कल परसों कहीं बात हो रही थी कि भाई ये ईरान में जो है वो खूबी है कि वहाँ पे वली फकीह का निज़ाम है तो वली फकीह उसको चलाता है, वरना और तो बस गड़बड़ी गड़बड़ है। तो मैंने कहा भाई तुमने बहुत अच्छा कहा, ईरान को वली फकीह चलाता है, हमें सिर्फ खुदा चलाता है, हमारे पास इससे कम की कोई बात नहीं है। यानी अगर एक सिस्टम ये चल रहा हो तो फिर इसका सिर्फ एक ही सबूत है कि खुदा है जो इसको चला लेगा, वरना तो कोई चांस नहीं है यहाँ पर। तो भाई ये कंट्रोल वंट्रोल की बात अभी मत करो, कैसे चल रहा है ये तो अल्लाह जानता है कैसे चल रहा है। इसमें एक बात है जो तारीफ़ की है और एक बात है जो बहुत ही ख़राबी की है। जो बात ख़राबी की है वो ये कि सिस्टम नहीं है, क्योटिक है। जो तारीफ़ की बात है वो ये कि पब्लिक के अंदर बका की ख्वाहिश बहुत शदीद है, जिसको आप लोग रेजिलियंस कहते हैं मेरे ख्याल में, बहुत ज़्यादा है ये, यहाँ से बहुत ज़्यादा। ये अगर यहाँ पे ये क्योस मचे, मतलब अगर दुनिया में 194 के करीब कंट्रीज हैं तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि जो क्योस पाकिस्तान में है, अगर ये क्योस 20 करोड़ की किसी आबादी में रिपीट होता रहे इतने अरसे जितने हमारे यहाँ रिपीट हुआ है, तो जितना पाकिस्तान खड़ा है उससे कहीं पीछे वो कंट्री होगा। ये पाकिस्तानी आवाम के अंदर एक ख़ास बात है, इसको हमें मानना पड़ेगा। ये लोग बेचारे अपनी अपनी ज़िंदगी खुद गुजारते हैं, ये खुद फैसले करते हैं। देखिए आपके पास एक सादा सा मामला है, आप कनाडा के अंदर रह रहे हैं या आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर रह रहे हैं, मसलन वेस्टर्न कंट्रीज़ को सोलर एनर्जी को प्रमोट करना है तो वो क्या करते हैं, वो सब्सिडाइज कर देते हैं। जैसे वो सब्सिडाइज देते हैं इसके ऊपर रिबेट देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो सोलर एनर्जी फैलना शुरू कर देती है। अच्छा पाकिस्तान में क्यों फैलती है, गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है नहीं, सिर्फ एक वजह से फैलती है, भाई मेरे घर पर लाइट नहीं आ रही, दूसरा रास्ता सोलर है, या इसका बिल इतना ज़्यादा है कि दूसरा रास्ता सोलर है। तो ये कौन, ये फैसला कौन कर रहा है, अवाम। गवर्नमेंट ना इंपोर्ट करेगी ना एक्सपोर्ट करेगी, बल्कि हम जैसे लोग जो बीच में बेचारे खड़े हैं, हम तो ज़्यादातर गवर्नमेंट से कहते हैं ये पैसे लो और सो जाओ, हमें काम करने दो यार, ख़त्म करो। क्योंकि वाकई ये मुसीबत में फंसे हुए, ये काम भी नहीं करने देते हैं। हाँ बाद में इस बीच में हमारे जैसे लोगों के नाम पर या हम ही जैसे लोग लुटेरे भी हैं, अपनी कौम का गला काटने वाले बहुत है, मार्जिन है वहाँ पर, जो यहाँ मार्जिन है बिजनेस का उससे कहीं ज़्यादा मार्जिन वहाँ पर बन सकता है अगर आप गला काटने पर आ जाए, उनको पूछेगा भी नहीं। अलबत्ता यहाँ पर भी कोई बहुत अलैहिस्सलाम हालत नहीं है, यहाँ पर जो कुछ हो रहा है पब्लिक के साथ वो अल्लाह जानता है। स्पेशली यहाँ का जो खाना पीना है उसमें तो मैं पहले समझता था बहुत अच्छा होगा यहाँ पर, अब मुझे समझ में आया कि भाई ये तो पूरा गेम मोनोपोली बनी हुई है, फूड इंडस्ट्री और मेडिसिन और ये और वो, इन सब ने एक बेड़ा खड़ा कर दिया यहाँ पे तो लोगों का बेचारों का। तो यहाँ पे अपना एक स्टाइल है, यानी वहाँ पे एक आदमी गुलाम होता है कोड़े खाता है, यहाँ पे एक आदमी गुलाम होता है वो मैकडोनल्ड खाता है, तो यहाँ पे अपने स्टाइल का गुलाम होता है। पर लिखा है डॉलर को जाता हुआ देखते हैं क्या, अगर जाएगा तो इसे किस चीज़ से रिप्लेस होना है, ये मुझसे पूछ रहा है पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूँ। भाई मैं नहीं बताऊँगा, मैं पल्ले मेरे पास खुद पैसा होता मैं इन्वेस्ट करता, मैं डॉलर कहाँ जाएगा वो कहाँ जाएगा, इस वक्त पूरी दुनिया कियोस के अंदर है, अगर गया तो सभी जाएगा, फिर अगर गया तो सब जाएगा क्योंकि इंटीग्रेटेड है ये, कोई इधर उधर का मसला नहीं है, जैसे डॉलर बच जाएगा जो लोग जाएगा यूरो बच जाएगा, नहीं जाएगा तो सब जाएगा इकट्ठा ही, और चांस तो है अब ये कि बस जो कुछ भी देखें। लुबनान में साद हरी ने इस्तीफ़ा दे दिया, लुबनान के हालात को कैसे देखते हैं? मेरा ख्याल है, मेरा अपने ख्याल है, पता नहीं सही है गलत, साद हरी वापस आएगा, मेरा अपने ख्याल है साद हरी वापस आएगा, मेरा अपने ख्याल है जो मुझे समझ में आ रहा है दूर दूर से, और ज़ाहिर है कि मैं उसका भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, वो ये कि मेरा अपने ख्याल है ये ड्रामा कर रहा है, अपनी पावर बढ़ाना चाहता है, इसको पता है लुबनान के पास ऑप्शन नहीं है तो ये खेल रहा है। हाँ मुमकिन है कि ये अपने खेल में खुद ही फंस जाए, ये भी हो सकता है कि अपने खेल में खुद ही फंस जाए, लेकिन बेज़ाहिर जो मुझे समझ में आ रहा है इस वक्त अभी तक वो ये कि नहीं ये गेम कर रहा है, ये अपने आप को पावरफुल बनाना चाह रहा है, एंड मुमकिन है शायद ये किसी तरह हिजबुल्ला से जान छुड़ाना चाह रहा हो, शायद इसकी खोपड़ी में आया हो कि मैं किसी तरीके से इनसे जान छुड़ाऊँ, तो मुमकिन है कि ये किसी टाइम के ऊपर सोचे कि पार्लियामेंट डिसॉल्व करवा ले, और मुमकिन है री इलेक्शन करवा ले, और उसमें ये सोच रहा हो कि हम हिजबुल्ला को दबाने में कामयाब हो जाएंगे, मुमकिन है कि ऐसा। बहरहाल जो कुछ भी है इस वक्त वहाँ पर भी इस टाइप का एक क्योस है, क्योस है। अच्छा लिखा है कि मैं ये आखिरी सवालात की तरफ जाते हैं, बहुत टाइम हो गया है, हमने सोचा था कि अच्छा एक थ्योरी के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का क्योस ईरान से जंगी नबर्द की तरफ जाने के लिए था, बिस्मिल्लाह जाए जंग कर, अमेरिका जंग की पोजीशन में है क्या? लग नहीं रहा, किसी भी तरह नहीं लग रहा कि अमेरिका ईरान के साथ जंग की पोजीशन में हो। ईरान को जंग का नुकसान होगा यकीनी तौर पर, कोई भी मुल्क ऐसा नहीं होता जिसको जंग का नुकसान ना हो, लेकिन जो कुछ एट स्टेक अमेरिका के लिए होगा वो उससे कहीं ज़्यादा है जो ईरान के लिए होगा। तो मेरा अपने ख्याल है कि अमेरिका के पास एक चीज़ इस जंग जीतने का अमेरिका के पास कोई इम्कान नहीं है, अमेरिका जंग नहीं जीत सकता, तो इसका मतलब है लिमिटेड स्ट्राइक के जरिए कोई बेनिफिट लेगा, लिमिटेड स्ट्राइक ईरानियों को मोबिलाइज करेगी विलायत फकीह के पीछे, हत्ता जिद्द इनकलाबी भी विलायत फकीह का साथ देने पर मजबूर हो जाएंगे, ये बात उनको भी पता है, उनके इंस्टीट्यूट कई दफ़ा ये एनालिसिस दे चुके हैं कि लिमिटेड स्ट्राइक सिर्फ हुकूमत को मजबूत करेगा, तो देर इज़ नो चांस। अच्छा तीसरा एक ऑप्शन ये कि एक लिमिटेड स्ट्राइक होगा न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को मिसाल के तौर पर न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसकी भी तकरीबन कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये इतना मुल्क के अंदर फैला हुआ है और इतना इस्टेब्लिश हुआ हुआ है कि इसको हम ये नहीं कह सकते कि आप एक कहूटा के अंदर कुछ है आपने जाके मार दिया मामला ख़त्म, वहाँ नहीं कर सके, तो ये ईरान में कहाँ कर पाएंगे, और ईरान कम अज़ कम भी 25-30 साल से इस बात की तैयारी के अंदर है कि ये लोग ये करेंगे, और हम ये सोचें कि उन्होंने तैयारी में इग्नोर कर दिया। अभी कल परसों एक बेवकूफ़ाना रिपोर्ट आई कि ईरानी अमेरिकन के पास जो लैंड कटर समझ दीजिए कि वो मारा और वो 30 मीटर 40 मीटर नीचे चले गए, उसको स्ट्रेंथ दे रहे हैं, और बेवकूफ़ हो ये रिपोर्ट जो मेरे पास आई है वो ईरानियों के पास नहीं आई होगी। अगर इस तरह के बम बनाकर पेनिट्रेशन बम बनाकर कोई किसी मुल्क को शिकस्त दे सकता होता तो वो बेवकूफ़ है, वो फिर 30 मीटर पर ही रखेगा क्या, वो एनफोर्समेंट करेगा, उनको नहीं पता कि आप कौन सा बम लेके आ सकते हो, ये मेरी बातें अहमखाना है। सिर्फ ये हो सकता है कि ईरान के अंदर से कोई क्योस ऐसा क्रिएट कर लिया जाए जिसके अंदर कोई अपॉर्चुनिस्ट आए और हुकूमत को कंट्रोल में ले ले, वो नहीं कर सके। 2009-10 के अंदर उन्होंने मैंने अर्ज़ किया वो ग्रीन रेवोल्यूशन का फितना किया था, और वो फेल होने के बाद उनके पास वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है, तो हत्ता जो इनके स्पाई नेटवर्क्स थे वो ठीक ठाक 2017 के अंदर डैमेज हुए हैं, सब्सटेंशियल डैमेज हुआ है वहाँ पर इनके स्पाई नेटवर्क्स को, तो इसी खातिर साइंटिस्ट का मरना बंद हो गया, वरना आपको याद है कि 2015 के अराउंड साइंटिस्ट कई साइंटिस्ट मारे गए थे, तो साइंटिस्ट क्यों मरना बंद हो गए, जबकि अब तो ईरान काम कर रहा है अपनी एनरिचमेंट के ऊपर। तो मसलन दो तीन बातें अभी समझ में आती हैं। मेरा अपने ख्याल है कि अगर अमेरिका का स्पाई नेटवर्क ईरान के अंदर अभी भी स्ट्रांगली काम कर रहा है तो 5-10 साइंटिस्ट मरने चाहिए इस वक्त, अगले चंद महीने के अंदर 5-10 साइंटिस्ट मरने चाहिए। लेकिन अगर 5-10 साइंटिस्ट नहीं मरते हैं अगले 1-1.5 साल के अंदर, इसका मतलब है इनका स्पाई नेटवर्क बुदा हो गया, उसका काम खराब हो चुका है। मोस्ट प्रोबेबली 2017 के अंदर इनको सब्सटेंशियल डैमेज हुआ है, और ये सिर्फ ईरान में नहीं हुआ है, इनको कई कंट्रीज के अंदर हुआ है, उसमें चाइना ने भी खुद फायदा उठाया इनके काम से। और तो ये लग रहा है कि अमेरिका के पास इस टाइप का कोई चांस नहीं है कि वो जंग में जाकर इनको कुछ सब्सटेंशियल डैमेज दे सकेंगे, लिमिटेड स्ट्राइक से मामला हल नहीं होगा। काफ़ी लंबा है, दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। Why did Iran not open borders for refugees of Rohingya Muslims? यो यमन के सीरिया के, जब ईरान, अच्छा होता यह कि जो रोमन उर्दू होती है वो हर चीज़ से ज़्यादा ख़राब बन जाती है बाद में जाके, क्योंकि उसमें कुछ समझ में नहीं आता। अब ये बड़ी अच्छी मूवमेंट किसी ने, शायद आपने भेजा था मैसेज कि भाई वो उर्दू, अगर रोमन लिखना है तो उर्दू में लिखो, रोमन उर्दू की जगह नेट उर्दू में लिखो, ये बात समझ में आती है कि भाई रोमन उर्दू का काम अच्छा नहीं है, इससे हमारी ज़बान बहुत मुतासर हो रही है। तो अगर उर्दू में ही लिखना है नेट उर्दू में लिखो, हर मोबाइल के अंदर फॉन्ट मौजूद है, थोड़ी सी मेहनत करें उर्दू में लिखना शुरू कर देंगे। रोमन उर्दू में तो वैसे ही टक 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 करना ही है, तो वो उर्दू में टक टक कर लो अगर वो उसी तरह करना है, स्पीड तो उसमें भी नहीं बनेगी। बहरहाल ये मेरा अपने ख्याल है, मेरी मुझे जो समझ में आ रहा है, उन्होंने ये कहा कि ईरानी क्यों अपनी बॉर्डर नहीं खोलते रेफ्यूजीज़ के लिए, तो अगर वो रेफ्यूजीज़ के लिए खोल दें तो ज़ाहिर रोहिंग्या को आसानी हो जाएगी। अच्छा मैं सिर्फ एक बात पूछता हूँ, जो कंट्रीज़ रेफ्यूजीज़ के लिए बॉर्डर खोलते हैं वो इंसानी हमदर्दी के जज्बे के तहत खोलते हैं? किसी भी स्टडी को जाके देख लें, किसी भी स्टडी को जाके देख लें। मिसाल के तौर पर अभी जो मैसिव स्केल के ऊपर बॉर्डर खुली थी वो जर्मनी था जिसने सीरियन रेफ्यूजीज़ को एक्सेप्ट किया था, सही है। उससे पहले अगर मिसाल के तौर पर इसकी कोई इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे कोई मिसाल ऐसी कोई ढूंढने की कोशिश करें तो मसलन वो बेल आउट था जो यूरोपियंस ने ग्रीस को दिया था, सही है। दोनों को जाके स्टडी करने इसका इकोनॉमी का बेनिफिट है या नहीं है। चांसलर ने खुद पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर इस बात का ऐलान किया है कि सीरियन रेफ्यूजीज को हमने ऑब्जर्व करके इतने बिलियन यूरो का फायदा उठाया है, चांसलर ने खुद ऐलान किया है ये। अब रकम उसने ऐलान की थी या नहीं की थी मुझे याद नहीं आ रहा, मेरा ख्याल में उसने कोई रकम भी दी थी, फिगर भी दी थी। तो ये बातें कहानी के तौर पर अच्छी हैं, ये बातें समझ में आती हैं। अगर एक कंट्री इस तरीके से बॉर्डर खोलता है उसके पास सिर्फ एक रास्ता होगा, उसने इन तमाम रेफ्यूजीज को सब्सटेंशली अंडर कंट्रोल रखने के लिए प्लान बनाया हुआ है, और वो ह्यूमैनिटी के बेसिस पे नहीं बनेगा, फिर वो किसी और बेस के ऊपर बनेगा, और उनको भी पता होता है। तो एक मशहूर जुमला है मार्गरेट थेचर का कि वो मार्गरेट थेचर चूंकि वो बहुत बड़ी रिफॉर्मिस्ट थी और उसने बड़ी ड्रामे किए, लेबर मूवमेंट को क्रश किया और ये किया वो किया, तो उससे किसी ने कहा कि तुमने लेबर मूवमेंट को क्रश कर दिया, ये इमिग्रेंट्स की मूवमेंट को क्रश करो। तो उसने कहा क्यों, कहने का ये कमाते यहाँ हैं भेजते पाकिस्तान है, कमाते यहाँ हैं भेजते इंडिया है। तो उसने कहा कि एक नस्ल करने दो, दूसरी नस्ल यहीं रखेगी, एक नस्ल भेजेगी, दूसरी नस्ल कहीं नहीं भेजेगी, अपने घर पे रखेगी। अब आप देखें ना, आप सब लोग अब पुराने वालों को कब तक भेजेंगे, उसके बाद आपको मॉर्गेज देने हैं, अपने बगल की गाड़ी का इंश्योरेंस पे करना है, क्या कुछ करना है, एक नस्ल देंगे, दूसरी नस्ल यहीं है, और दूसरी नस्ल फिर उसका कोई लिंक भी ज़्यादा नहीं है, डाइल्यूटेड है कम से कम, और तीसरी चौथी नस्ल इंग्लैंड जाके देख लो, किसी भी सेंटर के अंदर तीसरी नस्ल के बंदे निकाल लो। भाई अमेरिका में मैं एक सेंटर में गया, उस सेंटर को बने हुए 30-35 साल हो रहे थे, 30-35 साल, नाम नहीं लूंगा, बड़ा अच्छा सेंटर, 30-35 साल हो गए सेंटर को बने हुए। उसकी मैनेजिंग कमेटी के साथ एक छोटा सा हमारी एक मीटिंग रखी गई, सब मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग में बैठ गए। अब उसमें सारे उनके सो कॉल्ड जो मसलन जो सेक्रेटरीज होते हैं, मैं इसको मिनिस्टर कहने वाला था, जो भी सेक्रेटरीज होते हैं वो बैठे थे, तो वो जो सेक्रेटरीज बैठे थे उनमें यूथ का सेक्रेटरी भी बैठा हुआ था, और मज़े की बात क्या थी, इनमें से कोई भी माइग्रेंट की सेकेंड जनरेशन नहीं था, इवन यूथ वाला भी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 30 साल की 35 साल की एक्टिविटी के बावजूद वो सेकेंड जनरेशन को अट्रैक्ट नहीं कर सका। इवन यूथ का जो सेक्रेटरी था वो भी फर्स्ट जनरेशन थी माइग्रेंट की, यानी वो लड़का था जो खुद अभी आया था 3-4 साल पहले, वो वहां के यूथ का रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है? लेकिन वो मजबूर थे कि उसको रखें, क्योंकि उनको पता था उनका उसके अलावा कोई बंदा उनको जवान नहीं मिलेगा, जवान मिला तो वही मिलेगा जो अभी माइग्रेट करके आया। ये हमारा फेलियर है, और ये वो मसला है जो इनको पता है कि ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं, इनकी एक जरूरत है। हम सबको पता है, देखो एक सादा सी 2+2=4 कैलकुलेशन है, अगर किसी कौम के अंदर पॉपुलेशन की ग्रोथ 2.2-2.3 इससे कम है, इस कौम की इस नस्ल ने मरना है। एक मर्द एक औरत उसके पीछे 2 बच्चे अगर नहीं बन रहे तो ज़रा काउंट करना कि कितनों ने तो शादियां नहीं करनी है, कितनों ने शादियां करनी है बच्चे नहीं करने हैं, कितनों ने बच्चे करने हैं जो बच्चे मरने हैं, और ये सोचें कि किसी ने 8 करने हैं, वो अब आज की कहानी नहीं है, वो बर आजम XYZ में होता है, अब यहाँ नहीं होता कम से कम। यहाँ पे क्या इशू है? अगर पॉपुलेशन का ग्रोथ 2.2-2.3 पे नहीं है, इसका मतलब है ये रेस ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, आप जाके ग्लोबल जो ग्लोबल इस वक्त एवरेज है, कनाडा का, जर्मनी का, पोलैंड, हंगरी वगैरह वगैरह सब का देख लो, कोई देख लो कोई 2.2 से ऊपर है क्या? सबसे बुरा कंट्री इस मामले में, इमिग्रेंट्स को लेने के मामले में जो सबसे सख्त कंट्री मुझे समझ में आता था वो जापान था। इतने वो लोग अपने उसके ऊपर स्टिक थे, अपने ट्रेडिशन के ऊपर, और वाकई उनका डिजर्व भी करते हैं वो लोग। उन्होंने भी माइग्रेंट्स लिए इस दफा, उन्होंने भी लास्ट 2 ईयर्स में माइग्रेंट्स लेना शुरू कर दिए। क्यों? नेचुरली उनको पता था हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ 1.6-1.7 है, इसका मतलब हमारा कंट्री ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इनको कंट्री ख़त्म होने का मसला नहीं है, मसला ये है कि जो इकोनॉमी और लाइफ का स्टैंडर्ड आप लेके चल रहे हैं, अगर ये पॉपुलेशन की ग्रोथ नहीं है तो ये दोनों जाएंगे। मसला ये नहीं है कि इनको आबादी कम हो जाए, लाइफ का स्टैंडर्ड वही रहे, इकोनॉमी वही रहे, तो इनको तो बुरा नहीं लगेगा, कहेंगे बंदे कम कर लो। अच्छा, लेकिन बंदे कम करने का मतलब इकोनॉमी गई, आप फकीर होते चले जाएंगे, आपकी लाइफ स्टैंडर्ड गिरते चले जाएंगे। मजबूर हैं अपनी लाइफ के स्टैंडर्ड को मेंटेन रखने की खातिर कि बाहर से बहरहाल लेकर आए किसी को। ये वो काम है जो होता है। अब अगर किसी कंट्री को ऐसी कोई मुसीबत नहीं आई भी, मसलन पाकिस्तान, ओ भाई वो क्यों ले? उसको अपना कोई कम पड़ा हुआ? एक ही चीज में तो खुद कफील है, आबादी है। इसमें अलबत्त बहुत सारी चीज़ों में खुद कफील है, मजाक कर रहा हूँ जी, आप लोग भी ऐसा मजाक नहीं उड़ाया करें हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहरहाल बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन बहरहाल ये प्रॉब्लम है, हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और इसी तरीके से ईरान के साथ मसला है। फिर दूसरा मसला क्या होता है? मैंने बताया, अगर आप ह्यूमन बेसिस के ऊपर डील नहीं करते तो फिर सोसाइटी में क्या है? आप एक फिफ्थ प्लेयर क्रिएट कर रहे हैं। मतलब ये जो इंग्लैंड जिस क्योस से गुजर रहा है उसकी एक वजह यही है, इनकी आबादी में डाइवर्सिफिकेशन इनकी लिमिट से ज्यादा है, अभी इसको संभाल नहीं पा रहे। तो ये सब चीजें हैं, हम सबको मालूम है। अब एक सवाल है जो बिल्कुल है, अच्छा सवाल है, लेकिन ये कि बाहर अभी शायद जवाब देने का टाइम नहीं है इसका। क्या पाकिस्तान में निज़ाम में विलायत फकीह मुमकिन है? क्या ईरान की तर्ज का इनकलाब इस्लामी पाकिस्तान में मुमकिन है? ये मजहबी सियासत में ये सवाल इक्विवेलेंट है फिक में KFC खाना हलाल है या नहीं है, ये उसकी तरह का है। मजहबी सियासत में ये सवाल इतना ही कॉमनली आता है जैसे फिकही मसाइल में KFC वाला आता है, कारपेट नजिस हो जाए तो कैसे होगा। तो ये बहुत पुराना सवाल है, इसके ऊपर बहुत दफ़ा कहा जा चुका है, मैंने कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ मैं भी, और खैर मुझसे बेहतर लोग कई दफ़ा कह चुके हैं इसके ऊपर। वो ये कि भाई एक ख़ास तैयारी अगर हासिल हो, बिल्कुल हो सकता है, एक ख़ास तैयारी अगर हासिल हो। हाँ, ये कोई ये कहे कि डंडे के जोर पर होगा, डंडे के जोर पर वो निज़ाम असम बना ही नहीं है, उस निज़ाम में डंडे के जोर पे बनने की कोई क्वालिटी नहीं है। उस निज़ाम को बनना ही एक ख़ास शर्त पर है, वो लोगों की एक्सेप्टेंस है। दो चीज़ें होती हैं सियासत के अंदर, एक को आप लेजिटिमेसी कहते हैं और एक को आप पॉपुलैरिटी कहते हैं। लेजिटिमेसी सिस्टम बनाने के लिए काफ़ी नहीं होती, आपको पॉपुलैरिटी चाहिए होती है। मौला अमीर मोमिनीन के पास लेजिटिमेसी थी, लेकिन गज़ब खिलाफत के वक्त पॉपुलैरिटी नहीं थी। मौला अमीर मोमिनीन ने शमशीर चला के अपनी हुकूमत नहीं बनाई, जबकि 100% लेजिटिमेसी राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे उनके पास थी, दावत उज़ुल अशीरा से लेकर गदीर खुम तक और रसूल ग्राम की वफात तक। तो लेजिटिमेसी में कोई डाउट नहीं था, लेकिन पॉपुलैरिटी की कमी थी, अमीर मोमिनीन ने उस पॉपुलैरिटी की कमी को ताकत से पूरा नहीं किया, इंतज़ार किया यहाँ तक कि 36 हिजरा में वो पॉपुलैरिटी अचीव हुई, लोग आए अमीर मोमिनीन के पास, उन्होंने इनकार किया, उन्होंने फिर भी इसरार किया, फिर अमीर मोमिनीन हुकूमत पर आए। तो भाई अगर मैं और आप वाकई उनके नक्श कदम पर चलकर जिस तरह इमाम खुमैनी ने ईरान में किया कोई काम करना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ लेजिटिमेसी नहीं चाहिए बल्कि उसके साथ एक पॉपुलैरिटी चाहिए। वो पॉपुलैरिटी कैसे अचीव होगी उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, यह असल क्वेश्चन है। बहर आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं पहले क्या करता था, कोई सवाल करने वाला होता था तो सवाल के दौरान कहीं मजाक कर दिया करता था, सवाल करने वाले को लगता था कि वो मैंने उसका मजाक उड़ा दिया, सही। अब मैंने एक सवाल के साथ किया वो जो इस्टेब्लिशमेंट वाला था, और वो इसलिए अपनी जान बचाने के लिए कहीं मैं वापस गया, उन्होंने पकड़ ही लिया कि भाई ये क्या सवाल था, इसको क्यों जवाब दिया, तो मैं मसलन कहूँगा भाई मैंने मजाक में उड़ा दिया था उसको। तो मैं मामूलन कोशिश करता हूँ कि अब सवाल करने वाले का कोई मजाक ना करूँ, वरना वो किसी का दिल दुखता है, फिर बाद में अपने लिए भी अच्छा नहीं होता, बाद में अफसोस भी होता है। लेकिन उस सवाल के ऊपर मैंने थोड़ा सा इसको इधर उधर कर दिया, और वो उसकी नज़ाकत की वजह से, उसके अलावा कुछ नहीं। तो बारह लगा किसी का किसी को नाराज़गी का एहसास हुआ हो तो भाई ये सिर्फ थोड़ा सा लाइट करने के लिए होता है, क्वेश्चन की सेंसिटिव नेचर को थोड़ा सा लाइट करने के लिए, थोड़ा सा लोग थक जाते हैं उनको थोड़ा सा हंसाने के लिए होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। आप हजरात का इंतहाई शुक्रिया। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये इंसान को और सोचने पे मजबूर करते हैं, जैसे आपने मजबूर कर ही दिया कि मैं फजलुर रहमान के बारे में सोचूं, मेरा तो मूड नहीं था, नहीं आपने करवा दिया। चलिए अब आपको भी अल्लाह सवाब देगा इंशाअल्लाह। आखिर में अल्लाह के हुजूर दुआ करते हैं, खुदाया तुझे वास्ता नबी और औलाद नबी का, खुदाया तुझे वास्ता कुरान करीम का, ये दुनिया तेरी हुज्जत की मुंतज़र है परवरदिगारा, तुझे वास्ता अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम की अज़मत का, बिलअख़्स बीबी उम्मुल आइमा सलामुल्लाह अलैहा के मसाइब का वास्ता, उनकी खुशियों का वास्ता, सैयद व सरदार मौला और आका इमाम आखिरुज़्ज़मा की ज़हूर में ताजील फरमा। खुदाया जो कोई जहाँ कहीं भी उनकी नुसरत के लिए कोशिश कर रहा है, दुनिया की किसी भी मुल्क में हो, खुदाया उन सब की जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, उन सब की सलाहियतों में इजाफ़ा, उनकी तौफीकात में इजाफ़ा, और उनकी कोशिशों में कामयाबियाँ नसीब फरमा। ऐ खुदाया हमें इमाम के सच्चे मुखलिस आबान व अंसार से मुलहक होने की सआदत नसीब फरमा। खुदाया हमारी ज़िंदगियों का अख्तिताम अहले बैत अतहार की नुसरत और नुसरत की राह में शहादत करार फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम, बिजाह मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। वक्त के इमाम के हुज़ूर अदा एहतराम के लिए, मरहूमीन के दर्जात की बुलंदी के लिए, हमारे और आपके गुनाहान सगीरा व कबीरा की मग़फ़रत के लिए, मानवियत के इजाफे के लिए, और इंशाअल्लाह ये मराकज़ अहले बैत जो दुनिया में जहाँ कहीं भी बने इनके अंदर खलूस और कामयाबियों और फ़ालियत के इजाफे के लिए दुरूद भेजें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर।